భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
హరే కృష్ణ. సభీ భక్తో కా స్వాగత్ హై ఆజ్ కే ఇస్ పావన్ దివస్ పర్ संक्रांति के महोत्सव पर आप सबका स्वागत है. मुझे एक भक्त आज कह रहे थे, आज संक्रांति है तो यहां महाराष्ट्र में कहा जाता है तिलगुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाइए और मीठा बोलिए. परंतु तिलगुड़ से ज्यादा मीठा कुछ है क्या? है
मधुरम मधुरे भ्योपी మంగళేభ్యోపి మంగళం పావనం పావనేభ్యోపి హరే నామ ఏవ కేవలం.
మధురం మధురేభ్యోపి మంగళేభ్యోపి మంగళం పావనం పావనేభ్యోపి హరే నామైవ కేవలం.
మధురం మధురేభ్యోపి మంగళేభ్యోపి మంగళం పావనం పావనేభ్యోపి హరే నామ ఏవ కేవలం.
మధురం మధురేభ్యోపి మంగళేభ్యోపి మంగళం
హరినామ
పావనం పావనేభ్యోపి హరే నామైవ కేవలం.
హరే నామ ఏవ కేవలం, హరేర్ నామ ఏవ కేవలం, హరేర్ నామ ఏవ కేవలం, హరేర్ నామ ఏవ కేవలం,
హరేర్ నామ ఏవ కేవలం, హరేర్ నామ ఏవ కేవలం, హరేర్ నామ ఏవ కేవలం, హరే నామైవ కేవలం.
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే.
హరే
बोलिए
कृष्णा कृष्णा रे हरे
हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम హరే రామ రామ రామ.
राम हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
मधुरम मधुरेभ्योपि, कि जितनी भी मधुर वस्तुएं हैं संसार में, यदि उन सब मधुर वस्तुओं को कोई मिला दे, तिल गुड़ या केवल गुड़, खीर रबड़ी, जितने भी प्रकार की मधुर वस्तुएं हैं, यहां तक कि अमृत भी, जो स्वर्ग लोक में अमृत है, यदि उसे भी कोई मिला दे सभी मधुर वस्तुओं में, तो भगवान का जो हरिनाम है उससे मधुर और कोई वस्तु नहीं। मधुरम मधुरे अपि, जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान की कीर्ति का गान कर रहे थे श्रीमद् भागवत के रूप में, तो देवतागण उपस्थित हुए, स्वर्ग लोक से देवतागण उपस्थित हुए, जिन्हें बुलाया नहीं गया था, बिन बुलाए मेहमान, तो देवतागण उपस्थित हुए और वो अपने साथ लाए थे अमृत का घड़ा, घड़े में अमृत लाए थे, और उनका प्रयोजन क्या था, किस अभिप्राय से आए थे वो? उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि देखिए, परीक्षित को श्राप मिला है कि 7 दिन में तक्षक आकर डसने वाला है परीक्षित को, तो परीक्षित महाराज को भय किसका है? मृत्यु का। हम जो स्वर्ग के निवासी हैं, अमृत का पान करते रहते हैं, तो जो अमृत का पान करता है वो व्यक्ति अपने आप को अमर समझ बैठता है। अमृत जो मृत्यु के परे ले जाए वो है अमृत। तो देवतागण ये सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि यही कारण है ना, परीक्षित महाराज यहां आप श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, यही कारण है। तो उनका भय दूर करने के लिए ये अमृत हम लेकर आए, ये अमृत इन्हें दे दीजिए तो परीक्षित महाराज निश्चिंत रूप से फिर से अपने राज्य लौट सकते हैं। इस अमृत का पान करने के पश्चात कौन सा तक्षक उन्हें डस सकता है? तो ये अमृत इन्हें दे दीजिए और ये जो श्रीमद् भागवत का अमृत है ये हमें पिलाइए। तो सुखदेव गोस्वामी, कल्पना कीजिए, सुखदेव गोस्वामी क्या कहे होंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, धक्के मारकर निकालो इन देवताओं को, आप आश्चर्य कर रहे होंगे, सुखदेव गोस्वामी ऐसे कैसे कह सकते। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इनकी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत इनकी, इतनी उद्दंडता कि ये तुच्छ सा अमृत, इनके स्वर्ग का ये तुच्छ सा अमृत लेकर आए और इसकी तुलना ये भागवत से कर रहे हैं, भागवत के अमृत से कर रहे हैं इसकी तुलना। शर्म नहीं आई तो सुखदेव गोस्वामी ने दुत्कार कर इन्हें भगा दिया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी हम सबको सिखा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान जो है वो सर्वोपरि, वो सबसे मधुर वस्तु है। इसलिए हमें हरिनाम लेते हुए क्या कहना चाहिए, हरि नामामृत घ्या आणी गोड़ गोड़ बोला, कि जब भगवान का हरिनाम हम लेंगे हमारे मुख पर, जिह्वा पर जब वो हरिनाम आएगा तब, हालांकि हमें अब वो गोड़ गोड़ नहीं लग रहा है ना, तिलगुड ज्यादा गोड़ गोड़ लगता है। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारी जिह्वा पर ये हरिनाम मधुर क्यों नहीं लग रहा। श्रीपाद रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के वो निजी पार्षद, उन्होंने कहा कि भगवान का ये जो नाम है कृष्ण, ये जो दो अक्षर हैं कृष्ण इस नाम में, हे भगवान आपने इतना अमृत, इतनी मधुरता इसमें घोल दी है और आपने इतना अमृत, इतनी मधुरता घोल दी इसमें, परंतु मुझे दिया है केवल एक जिह्वा, मुझे केवल एक जिह्वा दी और केवल दो कान दिए, एक जिह्वा केवल उच्चारण करने के लिए और केवल दो कान इसका आस्वादन करने के लिए, सुनने के लिए, तो ये आपने ठीक नहीं किया। या तो आप अपने नाम में इतनी मधुरता न डालते, या तो आप मुझे करोड़ों जिह्वा देते, करोड़ों कान देते, आपने ये मेल ठीक नहीं लगाया। मेल कौन सा, मधुरता अपने नाम में और मुझे केवल एक जिह्वा और दो कान, ये मेल ठीक नहीं। तो रूप गोस्वामी, अब हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति है कि भगवान का एक नाम ही हमारे लिए इतना भारी पड़ जाता है कि इस एक जिह्वा से भी नहीं ले पा रहे हम, ये दो कानों से भी सुना नहीं जा रहा भगवान का वो नाम, और उसमें भी नींद आ जाती है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि क्यों ये आकर्षण नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम तो मधुर है परंतु हमारी जिह्वा पर एक रोग हो गया है। जैसे जब व्यक्ति को पीलिया का रोग हो जाता है, जॉन्डिस, तो पीलिया के रोग में होता क्या है कि जिह्वा से सारा स्वाद चला जाता है। उस रोगी को कोई मधुर से मधुर वस्तु भी दो, आज के दिन तिलगुड़ भी दो, गन्ने का रस या शक्कर, गुड़, जो भी मीठी वस्तु दो, उसके जिह्वा पर वो मीठी वस्तु रोग के कारण, उसे कैसा स्वाद आता है उसका, कड़वा, बेस्वाद। तो क्या वो मीठी वस्तु बेस्वाद है या कड़वी है? नहीं, वो मीठी वस्तु मीठी ही है। समस्या कहां पर है? समस्या है उस रोगी की जिह्वा के ऊपर। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि उसी भांति भगवान का नाम तो सुमधुर है, मधुरम मधुरेभ्योपि, परंतु मेरी जिह्वा, और उनकी जिह्वा नहीं बल्कि हमारी जिह्वा, इस पर ये पीलिया का रोग हो गया है। और ये रोग, इसकी तुलना किससे की गई है? भोगवांछा करे, हमने इसकी चर्चा की कि भोगवांछा भोगवांछा भोग विलास विषय वस्तु के पीछे, विष को पीते 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 हमने अपनी जिह्वा के ऊपर जो असली स्वाद लेने की शक्ति है, जो इस जिह्वा की, उसे हम खो बैठे हैं। तो जो पीलिया का रोगी होता है, जो अपनी जिह्वा से वो स्वाद खो बैठता है, उस रोगी को अपनी जिह्वा का स्वाद पुनः स्थापित करने के लिए क्या करना होता है? कोई मीठी वस्तु बार 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 खानी होती है। उसे गन्ने का रस पिलाया जाता है, साधारणतः गन्ने का रस बार बार पिलाया जाता है। और शुरुआत में जब वो गन्ने का रस पीता है तो वही गन्ने का रस लोग पैसा दे दे के पीते हैं बाहर, परंतु इस रोगी के लिए वो गन्ने का रस करेले के रस के समान लगता है। करेले का रस किसी ने पिया है? पिया है ना, बहुत मीठा है। तो इस रोगी को गन्ने का रस करेले के रस के समान लगता है। अब कल्पना कीजिए, यहां पर नासिक में, महाराष्ट्र में, बहुत जगह पर, गांवों में और बंबई में भी मैंने देखा, जगह जगह पर गन्ने के रस बिकते हैं, रसवंती ग्रह। अरे ये हैं असली रसवंती ग्रह, सारे रसों के खान ये हैं। तो क्या आपने देखा है कहीं पर रसवंती ग्रह और उसके अंदर वो जो मशीन होती है, यहां पर तो गाड़ी में भी घूमते हैं घुमाते हुए, तो क्या आपने देखा है कि उस मशीन के अंदर करेला डाला जा रहा है और करेले का रस निकाल निकाल कर रसवंती ग्रह में बेचा जा रहा है? कहीं पर करेले का रस बिक रहा है? यदि बिके भी तो कौन जाकर खरीदेगा? कौन खरीदेगा करेले का रस? तो आप लोग सब कह रहे हैं कि कोई नहीं खरीदेगा करेले का रस, परंतु हमने कल चर्चा की, महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि बिक रहा है कलयुग में। असली गन्ने का रस छोड़कर लोग करेले के रस के पीछे जा रहे हैं। आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। आश्चर्यम, अहो आश्चर्य, इस मनुष्य समाज में तो मूलतः क्या कह रहे हैं महाराज कुलशेखर? यही कह रहे हैं, सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। गन्ने का रस परित्यज्य करेले का रस पिबंती, ये हो रहा है। तो भगवान का नाम जो इतना मधुर है, उसका परित्याग कर ये जो इंद्रिय भोग का जो रस है करेले के रस के समान, उसमें ये मनुष्य समाज मिठास ढूंढ रहा है और उसे मीठा मान रहा है, और भगवान के जो हरि नाम का अमृत है उसे कड़वा मानता है। तो शुरुआत में ये हरि नाम करेले के रस के समान लगता है, हालांकि है मीठा जैसा गन्ने का रस, तो उस रोगी के लिए, उस रोगी के लिए क्या निर्धारित किया गया है? पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, वही गन्ने का रस पीते रहो। जितना वो गन्ने का रस पियोगे उतनी ये जिह्वा जो है वो अपने रोग से मुक्त होती रहेगी, और उतना ही इस जिह्वा के ऊपर वो स्वाद फिर से आता रहेगा। तो कई बार लोग पूछते हैं कि जब ये हरे कृष्ण महामंत्र हम जपते हैं आपका, तो इतना रस नहीं मिलता जितना जब हम फिल्मों के गाने सुनते हैं। हां, उसमें यदि हरे कृष्ण आजकल जो आ जाता है तो थोड़ा अच्छा लग जाता है। देखिए, वो भी तंग आ गए और कुछ मिला नहीं तो हरे कृष्ण लग दिया बीच में। तो ये क्यों, ये स्थिति क्यों है? क्योंकि अब तक हम रोगी हैं, ये जिह्वा रोगी है, और इस रोग का निवारण करने के लिए एकमात्र इलाज वही है, हम इस हरिनाम का पान करते रहें, करते रहें, करते रहें। इसलिए कहा गया है कीर्तनीय सदा हरि, हर समय हमें भगवान श्री हरि का कीर्तन करते रहना है, करते रहना है। तो भगवान का ये जो नाम है, और भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, हालांकि जैसे हम मृदंग करताल इत्यादि लेकर वाद्यों के साथ जब कीर्तन करते हैं तो वो भी भगवान का कीर्तन है, परंतु भगवान की कीर्ति का गान भी कीर्तन है। जैसे कि हम ये 6 दिन करते आए हैं, भगवान की कीर्ति का गान हो रहा है, और क्या हो रहा है? भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, और भगवान की उन लीलाओं में भगवान की कौन कौन सी कीर्तियां थी, तो भगवान की कीर्तियों के गान को कहते हैं कीर्तन। तो यही चल रहा है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। इसलिए परीक्षित महाराज को कहा गया है श्रवण आचार्य, जिन्होंने श्रवण अवस्था की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली, वो है परीक्षित महाराज। 7 दिन 7 रात बिना खाए, बिना कुछ पिए, बिना सोए। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज वहां पर भागवत सप्ताह के लिए अपना बिस्तर लेकर आए थे कि नींद आएगी, थक जाएंगे तो थोड़ा सोएंगे। ऐसा नहीं कि भंडारा रखा था, टिफिन बांध कर आए थे। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना सोए 7 रात 7 दिन परीक्षित महाराज ने श्रवण किया। तो परीक्षित महाराज वो श्रवणाचार्य, और सुखदेव गोस्वामी वो परम कीर्तनीय, जिन्होंने भगवान की कीर्ति का गान किया। तो न तो परीक्षित महाराज थक रहे थे सुनने में, और न सुखदेव गोस्वामी थक रहे थे सुनाने में, तो दोनों में होड़ लगी थी, परीक्षित महाराज में और सुखदेव गोस्वामी में स्पर्धा लगी थी। कैसी स्पर्धा? परीक्षित महाराज वो उस पार्टी में थे कि कितना मैं सुन सकता हूं, और सुखदेव गोस्वामी उस पार्टी में थे मैं कितना सुना सकता हूं। तो दोनों में होड़ लगी थी, परंतु जब दो भक्तों के बीच में स्पर्धा होती है तो कौन जीतता है? इस भौतिक संसार में जब दो व्यक्तियों के बीच में स्पर्धा होती है, इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट का मैच जब स्पर्धा होती है तो सभी भारतीय चाहते हैं कि हमारी भारतीय टीम जीते, और उस देश में वो चाहते हैं कि उनकी टीम जीते। तो जब स्पर्धा होती है तो हर एक अपनी टीम को जिताना चाहता है, जीतता देख वो अपनी आंखों से उन्हें जीतता देख चाहता है। तो इस भौतिक संसार की स्पर्धा में एक जीतता है, एक हारता है, परंतु आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक स्पर्धा में दोनों की जीत होती है। तो दोनों की जीत हुई, परीक्षित महाराज की और सुखदेव गोस्वामी दोनों की जीत हुई। तो हमें इन दोनों से सीखना है कि कैसे कीर्तनीय सदा हरि सुखदेव गोस्वामी जैसा करते रहें, और उसके साथ साथ परीक्षित महाराज जैसे श्रवण आचार्य हम बने। तो कल हमने चर्चा की, दामोदर लीला हमने शुरू की कि श्रीमद् भागवत में दामोदर लीला ये एक बहुत ही मधुर सुमधुर लीला है, और सुखदेव गोस्वामी बहुत ही रस ले लेकर सुना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी दामोदर लीला को ऐसे सुना रहे हैं मानो सुखदेव गोस्वामी अपने सामने, हालांकि मानो नहीं बल्कि देख ही रहे थे, सुखदेव गोस्वामी अपने सामने दामोदर लीला होती देख रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दिखा रहे हैं, देखो देखो देखो, एवं संदर्शित, देखो ये हरिणा भृत्य वश्यत, ये भगवान श्री हरि, देखो परीक्षित। और परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी जो दिखा रहे थे उन्हीं के समान वो भी भगवान को देख रहे थे, देख पा रहे थे सुखदेव गोस्वामी की कृपा की वजह से। तो हमने चर्चा की मृद भक्षण लीला एवं दामोदर लीला, क्या संबंध है दोनों में, याद है दोनों में क्या संबंध है मृद भक्षण में और दामोदर लीला में? तिलगुड़ ज्यादा हो गया लगता है आज। भगवान अपना विश्वरूप दिखाए माता यशोदा को, और अपना विश्वरूप दिखाने के पश्चात भगवान ने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरी माता ये मुझे भगवान मानने लगी है, ये ठीक नहीं, सारी दुनिया मुझे भगवान कहे कोई गम नहीं, परंतु माता यशोदा वो मुझे भगवान नहीं कहनी चाहिए। माता यशोदा की तो डांट खाने में आया हूं, माता यशोदा का वो वात्सल्य प्रेम, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम वो लेने में आया हूं। इसलिए भगवान ने सोचा कि नहीं, ये रंग में भंग हो रहा है। माता यशोदा जब विश्वरूप उन्होंने देखा तो वो थोड़ा सा भ्रमित हो गए, और कल हमने उदाहरण लिया वो जो गाढ़ा घी माता यशोदा का थोड़ा सा पिघलने लगा। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि ये घी पिघल रहा है, तुरंत घी को लेके फ्रिज में रख दिया, अर्थात योग माया। अब देखिए एक बहुत ही रोमांचक मुद्दा यहां पर, कि माता यशोदा जैसे बड़े बड़े महान भक्त वो जब भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण को अपना लाला, अपना पुत्र कन्हैया मानते हैं। वो भगवान को भगवान नहीं मानते। तो कारण क्या है, कल हमने इसकी चर्चा की, क्योंकि उनका प्रेम इतना गाढ़ा है कि उस गाढ़े प्रेम में उन्हें ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता भगवान का। और इस भौतिक संसार के जो नास्तिक हैं वो भी जब भगवान की लीला सुनते हैं तो वो भी भगवान को साधारण मानते हैं। तो नास्तिक भगवान को साधारण मानते हैं, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुणों को साधारण मानते हैं। और माता यशोदा अपने कृष्ण को अपना पुत्र, अपना साधारण सा पुत्र, ग्वाला, गोप मानती है। क्या अंतर है दोनों में? क्या ये नास्तिक माता यशोदा के स्तर पर है? क्या माता यशोदा नास्तिक है? कैसे समझा जाए? जो नास्तिक भगवान को एक साधारण जीव मानते हैं, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित। मूढ़ा, मूढ़ है वो जो मुझे एक साधारण सा जीव, एक मनुष्य मानते हैं उन्हीं की तरह। और हमने उदाहरण क्या लिया था, मिस्री और फिटकरी, याद है? तो वो महामाया के वशीभूत होकर भगवान को सर्वसाधारण एक मनुष्य जीव मानते हैं। और माता यशोदा, माता यशोदा भगवान को अपना ही पुत्र मानती है, योग माया के वशीभूत होकर। दोनों में अंतर क्या है? एक माया, महामाया के वशीभूत है, एक योग माया के वशीभूत है। तो भगवान ने जब अपना विश्वरूप दिखा दिया अपने मुख में, तो भगवान ने सोचा कि नहीं, अब मुझे कोई ऐसी लीला करनी पड़ेगी जिसमें माता यशोदा केवल मुझे पुत्र ही नहीं माने, अपना अपना साधारण सा पुत्र ही नहीं माने, बल्कि माता यशोदा मुझे एक अपराधी जानकर दंडित करे। तो भगवान ने ये अपराध, तथाकथित अपराध भगवान ने किया, ताकि माता यशोदा का वो गाढ़ा प्रेम फिर से उसका आस्वादन भगवान कर सके। इसलिए भगवान का आदान प्रदान जो माता यशोदा के साथ हुआ है वो इतना गहरा है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जसोदा को लल्ला गौवन का चरैया देखो मन बस गया मोरे कृष्ण कन्हैया। राधे कृष्ण बोलो जय जय, राधे कृष्ण बोलो बोलो, राधे कृष्ण बोलो जय जय, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो जय जय, राधे कृष्ण बोलो बोलो, राधे कृष्ण बोलो जय जय, राधे कृष्ण बोलो। जसोदा को लल्ला गौवन का चरैया देखो मन बस गया मोहे कृष्ण
कन्हैया राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण बोलो बोलो राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण बोलो बंसी बजाए रे जिया भर माए जिया भर मा के जाने कहाँ छिप जाए ऐसे ऐसे जादू करे रस का रचैया देखो मन बस गया मोहे कृष्ण कन्हैया राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण बोलो बोलो राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण बोलो बोलो राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण बोलो।
माता यशोदा उनकी स्थिति ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वो उठकर गए जब माता यशोदा वो अपने गीत में अपने कीर्तन में जब वो भगवान को पुकार रही थी
यानी यानी गीतानी तदबाल चरितानी च
भगवान सोए हुए माता यशोदा कीर्तन कर रही है और माता यशोदा के कीर्तन से दधि निर्मंथने काले कल हमने इसकी चर्चा की कि माता यशोदा ने हमें अपने उदाहरण से क्या सिखाया कि हमारा कर्म होना चाहिए कृष्ण की सेवा हमारे वचन कृष्ण का नाम और हमारे स्मरण में कृष्ण स्मरण। तो भगवान ने जब ये देखा कि माता यशोदा मेरा कीर्तन कर रही है मेरा स्मरण कर रही है और मेरी सेवा में लगी है तो भगवान उठे और भगवान अब रेंगते हुए जा रहे हैं जहां पर माता यशोदा वो दही को बिलो रही है। और कौन सा वो दही था? पद्मगंध दूध, पद्मगंध गायों से निकला हुआ पद्मगंध दूध का दही उसको बिलो रही थी। तो भगवान ने अपने एक हाथ से उस मंथनी को पकड़ा और दूसरे हाथ से माता यशोदा का आंचल और भगवान ने संकेत किया कि इसे रोको क्योंकि मंथन का सार मैं हूं। मंथन की तुलना हमने की थी शास्त्र अध्ययन से, तो शास्त्र अध्ययन को मंथन कहा गया है। तो मैं हूं सारे शास्त्रों का सार, तो इसे छोड़ो और अब मुझे अपना स्तनपान करायो। तो भगवान अब अपने जो आठ ऐश्वर्य हैं जिसकी चर्चा हमने कल शुरू की थी, कौन कौन से अपने आठ ऐश्वर्यों का परित्याग किया। सबसे पहले भगवान यहां पर वो दिखा रहे हैं जैसे नारद मुनि को उन्होंने कहा कि जहां कहीं पर भी मेरे शुद्ध भक्त एकत्रित होकर मुझे पुकारते हैं मैं वहां पर उपस्थित हो जाता हूं। तो भगवान हालांकि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कहीं जाने की भी, भगवान आत्मा राम हैं, वो आत्मसंतुष्ट हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है भगवान को। और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, कहीं कुछ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी भगवान जब भक्त बुलाते हैं तो भगवान जाते हैं वहां पर। और बहुत से उदाहरण हुए हैं, जैसे कि गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र ये कौन थे? एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, ये इंद्रदुम्न महाराज, जिन्हें श्राप मिला था और वो एक हाथी बन गए थे। तो गजेंद्र की कथा हमने सुनी है बहुत बार कि गजों में इंद्र गजेंद्र, हाथियों के राजा ये गजेंद्र त्रिकुट पर्वत पर अपने परिवार के साथ विहार करते हुए, आनंद भोगते हुए जब वो उस सरोवर में गए तो किसने पकड़ लिया गजेंद्र को? उस ग्राह ने, मगरमच्छ, उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया गजेंद्र को। और गजेंद्र जो कि इतना शक्तिशाली वो हाथी, और उसके साथ उसका सारा परिवार, गजेंद्र का सारा परिवार उसके साथ था, और सभी डरते थे गजेंद्र से। जब गजेंद्र चलता तो खूंखार से खूंखार प्राणी जानवर भी डर कर भाग जाता गजेंद्र से। केवल गजेंद्र की चाल इतनी खतरनाक थी। तो वो गजेंद्र जो सबके दिलों में डर पैदा करते हुए चल रहा था, जब इस ग्राह ने पकड़ लिया गजेंद्र को, तो बताया गया है कि गजेंद्र, सबसे पहले गजेंद्र अपने परिवार वालों की तरफ देखे गजेंद्र ने कि तुम लोग सब खड़े क्या देख रहे हो। गजेंद्र ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, मिसेस गजेंद्र, अपनी पत्नी की तरफ देखा, अरे तुम्हें इतना कुछ खिलाया पिलाया, इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, अब केवल वहां पर देखकर, वहां पर खड़ी देख रही हो तुम। तो मिसेस गजेंद्र वो अपनी सूंड से नमस्कार करते हुए कहती है, पतिदेव मैं क्या करूं, अब उस ग्राह ने आपको पकड़ लिया है तो मेरे हाथ में क्या है। तो वो कुछ नहीं कर सकी। गजेंद्र ने अपने अन्य परिवार वालों की तरफ देखा इस आशा से कम वो तो कुछ करेंगे। वो भी हताश देखने लगे, हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हर जीव का केवल एक ही सहारा है और वो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसन्येषु असच्छ्वपि तेषां प्रमत्त निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस भौतिक संसार में हम जो हमारी आत्म सेना इकट्ठा करते हैं, हर जीव एक अपनी सेना खड़ा करता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कौन सी है वो सेना? देह, सबसे पहले स्वयं का देह, ये मेरी रक्षा हेतु मेरी सेना में है, ये मेरा देह। देह आपत्य कलत्र आदिशु, और फिर इस देह का संबंध किसी और देह से, तो पति पत्नी, पत्नी पति, तो फिर ये जो सेना है इस सेना का विस्तार होता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और फिर ये दो देह हो गए और इसके पश्चात फिर और कितने देह उत्पन्न होते रहते हैं, तो सेना बढ़ती रहती है। तो मेरा देह फिर किसी और का देह, इस देह से संबंधित फिर हम दोनों देहों से संबंधित और कितने देह, और इन सब को लेकर मेरी सेना में है संपत्ति, धन दौलत ऐश्वर्य जो कुछ मैं इकट्ठा करता हूं इस सेना में। और तो सुखदेव गोस्वामी ये पूछ रहे हैं, तो ये सेना किस काम की है? अंत समय में ये जो सेना है सब छोड़कर चली जाती है, पूरी सेना। ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। कहा गया है कि अंत समय में ये देह भी हमारा साथ नहीं देता। तो गजेंद्र उस सब की तरफ देखते हुए, आशा भरी आंखों से देखते हुए गजेंद्र वो अब अपने स्वयं की शक्ति पर विश्वास रख रहे थे। तो गजेंद्र अब अपनी स्वयं की शक्ति से लड़ने लगे उस ग्रह से। कितना समय? 1000 स्वर्गीय वर्ष। ये स्वर्गीय वर्ष क्या होते हैं? ये जो हमारे पार्थिव वर्ष हैं पृथ्वी के, इसका यदि आप 6 महीना लो तो स्वर्ग का 12 घंटा होता है। तो हमारा 6 महीना स्वर्ग के 12 घंटे, तो हमारा 1 साल स्वर्ग का 1 दिन 24 घंटे हुए। ऐसे 1000 स्वर्गीय वर्ष गजेंद्र उस ग्राह से लड़ रहे थे। और फिर गजेंद्र उन्हें समझ में आया, गजेंद्र को समझ में आया कि मैं क्यों नहीं जीत पा रहा इस ग्राह से, क्योंकि गजेंद्र अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं था। गजेंद्र वो एक थल का प्राणी था, पृथ्वी का प्राणी, धरती का प्राणी था। वो थलचर था, और जो मगरमच्छ वो जलचर। तो इसलिए, क्योंकि गजेंद्र अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं था, इसलिए उस मगरमच्छ ने गजेंद्र के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। तो यहां पर गजेंद्र हमें सिखा रहे हैं कि हम जो अपना आध्यात्मिक संसार, अपना घर छोड़कर यहां पर आए हैं इस कैद खाने में, दुर्ग, इस भौतिक संसार में, तो ये हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। एक कैदी की स्वाभाविक स्थिति जेल की नहीं होती, उसकी स्वाभाविक स्थिति उसके घर में होती है। तो हम सब अपना घर भगवत धाम छोड़कर यहां पर आए, और यहां पर हम जूझ रहे हैं माया से, जैसे गजेंद्र जूझ रहा था उस ग्राह से। तो हम लड़ रहे हैं ताकि हम जीवित रहें इंद्रिय भोग करने हेतु। परंतु इस माया देवी से हम जीत नहीं पाएंगे। जैसे गजेंद्र ने प्रयास किया, 1000 स्वर्गीय वर्ष लड़ता रहा गजेंद्र, जीत नहीं पाया। वो अपनी शक्ति खोता रहा, उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी गजेंद्र की। और उस समय गजेंद्र ने सोचा कि केवल एक ही हैं जो मेरी रक्षा अब कर सकते हैं, और वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो गजेंद्र अब वो भगवान को पुकारते हैं, माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय, कि मैं एक पशु हूं भगवान, एक मैं पशु और वो भी पशुओं में एक हाथी, और पहले से ही मैं वो आत्मा हूं जिसके ऊपर ये पशु का देह है, इसका पाश मेरे ऊपर है, पशु देह का पाश, और उसके ऊपर इस ग्रह का पाश आ गया, ये मगरमच्छ ने मुझे पकड़ रखा है, तो मेरी आत्मा के ऊपर मेरे पशु देह का पाश और उस पशु देह के ऊपर इस ग्रह का पाश, कैसे मैं अपने आप को मुक्त करूंगा? इस स्थिति में अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। तो हमारी स्थिति क्या है? एक तो ये देह, उसके ऊपर इंद्रिय भोग का पाश, भोग वांछा। हमारी भी स्थिति गजेंद्र के ही समान है। अंतर केवल इतना है, गजेंद्र ने अपनी स्थिति पहचान ली थी, और अब तक हम अपनी स्थिति पहचाने नहीं है। अरे कलयुग में तो स्थिति ऐसी है कि लोग ग्रह को ढूंढ ढूंढ के, मगरमच्छ को ढूंढ ढूंढ के अपना पैर अंदर डाल रहे हैं। गजेंद्र की कथा में तो गजेंद्र ने कोई इनविटेशन नहीं दिया था उस ग्रह को, अकस्मात वो ग्रह आकर पकड़ लिया था गजेंद्र को। परंतु कलयुग में स्थिति ऐसी है कि लोग इस ग्रह को ढूंढ ढूंढ कर अपना पैर दे रहे हैं, पकड़ो मुझे, पाश में बांधो, काट डालो, मार डालो मुझे, इंद्रिय भोग के इस ग्रह के पाश में। तो अंतर यही है हम में और गजेंद्र में। गजेंद्र ने अपनी स्थिति पहचान ली थी, हम अब तक अपनी स्थिति पहचाने नहीं है। तो गजेंद्र ने जान लिया कि और कोई नहीं, और कोई नहीं जो मुझे इस दुखद अवस्था से बाहर निकाल सकता है इन भगवान के अलावा। तो वो भगवान को पुकारते हैं, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय। हे भगवान, आप मुक्ताय हैं, आपके अंदर भूरी भूरी करुणा है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणा के सिंधु हैं, आप कृपया आइए और आप मुझे इस ग्रह से, और इस ग्रह से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मेरे इंद्रिय भोग की इच्छा है, उस ग्रह से मुझे बाहर निकालिए। तो भगवान को पुकारा गजेंद्र ने, तब भगवान को पुकारा, और कैसे पुकारा? गजेंद्र ने देखा कि उस सरोवर में एक कमल का पुष्प था। तो गजेंद्र अपनी दुखद विपद स्थिति में गजेंद्र ने उस कमल के पुष्प को अपने सूंड से उठाया उस कमल के पुष्प को अपनी सूंड से उठाया और उस कमल के पुष्प को अपनी सूंड से ऊपर करते हुए भगवान की तरफ दिखाते हुए कि हे भगवान, मेरे पास केवल यही है आपको अर्पित करने के लिए आज। तो गजेंद्र हमें क्या सिखा रहे हैं, चाहे हम माया के ग्रह के पाश में फंसे भी क्यों न रहें, यदि हम जो कुछ हमसे बन पड़े भगवान को अर्पित करें तो भगवान उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। ये गजेंद्र हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, हमारी स्थिति, हम माया के पाश में हैं, इस माया के ग्राह मगरमच्छ ने हमें पकड़ लिया है, कसकर जकड़ लिया है, परंतु यदि हमारे अंदर थोड़ी बहुत भी शक्ति बाकी रह गई है और उस शक्ति से यदि हम भगवान को प्रेम से कुछ अर्पित करते हैं, जैसे गजेंद्र ने किया, वो एक पुष्प कमल का, वो एक कमल का पुष्प उठाया गजेंद्र ने और भगवान की तरफ उसे करते भगवान को अर्पित करने गया। तो जैसे ही भगवान के नाम का उच्चारण भगवान की तरफ उसने मुख किया गजेंद्र ने, अब तक भगवान निकले नहीं थे अपने धराधाम से, भगवान वैकुंठ से निकले नहीं थे गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तो गजेंद्र, जब गजेंद्र ने भगवान के संदर्भ में जब अपने कार्य किए तो भगवान तुरंत अब गरुड़ जी से कहते हैं। गरुड़ जी कौन है? वो भगवान श्री विष्णु के निजी वाहन गरुड़ जी। तो भगवान तुरंत गरुड़ जी से कहते हैं कि तुरंत तैयार हो जाओ, त्रिकुट पर्वत पर चलना है जहां पर मेरा भक्त गजेंद्र विपदा में है। तो गरुड़ जी तुरंत पार्किंग से बाहर आते हैं और भगवान गरुड़ जी के ऊपर आरूढ़, भगवान अब गरुड़ जी को कहते हैं, जितना तेज उड़ सकते हो उतना तेज उड़ो, जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर है सारी शक्ति लगा दो। तो गजेंद्र वो अपनी सारी शक्ति लगा, गरुड़ जी अपनी सारी शक्ति लगाकर उड़ रहे थे, परंतु भगवान ने कहा, बहुत धीरे चल रहे थे, बहुत धीरे। अब सोचिए, गरुड़ जो कि ये गरुड़ एयरलाइंस सबसे तेज रफ्तार वाली एयरलाइंस है, तो गरुड़ जी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी सबसे तेज उड़ने के लिए, परंतु फिर भी भगवान संतुष्ट नहीं थे। भगवान ने कहा, बहुत धीरे, क्योंकि भगवान के अंदर इतनी आतुरता थी गजेंद्र की रक्षा करने के लिए कि इतने समय पश्चात ये गजेंद्र अब पहली दफा मेरी तरफ अपना मुख किया है और मुझे पुकार रहा है, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। भगवान इतने उतावले थे, तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि भगवान हमारी मुक्ति के लिए कितने उतावले हैं। भगवान प्रतीक्षा में हैं कि कब ये जीव मेरी तरफ मुख करेगा। तो भगवान गरुड़ जी को कह रहे हैं, जल्दी और तेज और तेज। और गरुड़ जी अब अपनी सारी शक्ति लगा दी, गरुड़ जी के पास और शक्ति बाकी नहीं रही, तो गरुड़ जी बेहोश होकर गिर गए। तो अब भगवान के सामने एक और समस्या, त्रिकुट पर्वत पर तो गजेंद्र वो विपदा में, वो एक भगवान का भक्त, और यहां पर एक और भगवान के भक्त, ये अब बेहोश होकर गिर गए। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप लिया और अपने चतुर्भुज रूप में भगवान ने अपने एक हाथ से गरुड़ जी को अपने कंधे पर उठाया, अपने एक हाथ से गरुड़ जी को कंधे पर उठाए हैं और भगवान अब दौड़ने लगे गजेंद्र की और गरुड़ जी दोनों की रक्षा करने हेतु। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। तो अब दोनों भक्तों की रक्षा हेतु भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया, एक हाथ से गरुड़ जी को अपने कंधे पर उठाए हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। भगवान ने अपने एक हाथ में आचमन लिया और आचमन का पानी छिड़का रहे हैं गरुड़ जी को फिर से होश में लाने के लिए, गरुड़ जी को फिर से होश में लाने के लिए पानी छिड़का रहे हैं। और बताया गया है कि भगवान इतनी तेजी से भाग रहे थे कि भगवान की जो धोती थी पीतांबर, भगवान की धोती फिसलने लगी। तो भगवान अपने तीसरे हाथ से अपनी धोती पकड़े थे और भगवान इस अवस्था में पहुंचे गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। और फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह को काट दिया। हमने चर्चा की सुदर्शन की, यदि आपको याद है कि भगवान का ये जो सुदर्शन है ये बहुत दिव्य है, ये भगवान के ही सुदर्शन के समान सुदर्शन है इसका। तो ज्यादातर तो हम गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं तो गजेंद्र का गुणगान होता है। यहां पर ध्यान देने की बात एक और है कि भगवान ने उस मगरमच्छ के ऊपर कृपा भी की। उस मगरमच्छ के ऊपर भगवान की कृपा कैसी थी कि भगवान के सुदर्शन का स्पर्श उस मगरमच्छ को हुआ। अरे भगवान जब किसी को मारते हैं व्यक्तिगत रूप से तो उसका तो उद्धार निश्चित है। शिशुपाल जैसा द्रोही, शिशुपाल जैसा ईर्ष्यालु व्यक्ति, उसे भी भगवान ने अपने सुदर्शन से मारा था। शिशुपाल इतना ईर्ष्यालु था कि पैदा होते ही उसके मुख से पहले शब्द कौन से निकले, भगवान श्री कृष्ण के प्रति गाली। ये शिशुपाल के पहले शब्द, ये शिशुपाल, भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया अपने सुदर्शन चक्र छुआते हुए। तो ये मगरमच्छ, हालांकि गजेंद्र का तो मोक्ष हुआ ही, परंतु ये मगरमच्छ का उद्धार हो गया। क्यों, क्या गुण था इस मगरमच्छ में? ये मगरमच्छ गजेंद्र जैसे महान भक्त के चरणों को पकड़े था। क्या किया था उसने? भक्त के चरणों को पकड़े था, हालांकि अनुकूल भाव से नहीं पकड़ा था उसने। उस ग्राह ने, उस मगरमच्छ ने गजेंद्र के चरणों को प्रतिकूल भाव से पकड़ा था। अरे तो यदि कोई प्रतिकूल भाव से भी भक्तों के चरणों के संपर्क में आ जाए तो उसे भगवान का सुदर्शन हो सकता है, मिल सकता है। तो यदि कोई भगवान के भक्तों के चरणों को अनुकूल भाव से उनका अनुगमन करे, भक्त भक्त सब तुमने तारे
बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे, भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे,
भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे,
भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे,
भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे।
लीजो खबर हमारे राधे श्याम श्याम श्याम,
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 जय केशव कली मलहारे राधे श्याम श्याम श्याम,
केशव कली बलहारे राधे श्याम श्याम श्याम,
जय माधव मदन मुरारे राधे श्याम श्याम श्याम,
जय माधव मदन मुरारे राधे श्याम श्याम श्याम,
जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम,
माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम,
एली जो खबर हमारी राधे श्याम श्याम श्याम,
जो खबर हमारी राधे श्याम श्याम श्याम,
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 राधे श्याम श्याम
भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे, लीजो खबर हमारी राधे श्याम श्याम श्याम, कि ऐसे ऐसे भक्तों को आपने तार दिया, परंतु बिना भक्ति के मैं खड़ा हूं, कृपया हमारी भी खबर लीजिए हे राधे श्याम। तो गजेंद्र ने जब पुकारा तो कहा गया है कि गजेंद्र भगवान का नाम पूरा करने से पहले भगवान पहुंच गए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। नाम उच्चारण पूरा होने से पहले भगवान वहां पर गजेंद्र की रक्षा हेतु पहुंच गए। तो यदि गजेंद्र ऐसे भगवान के भक्त हुए जब इनकी रक्षा करने हेतु भगवान इतनी जल्दी पहुंच गए, तो यहां पर माता यशोदा जब पुकार रही है अपने कीर्तन में, तो क्या भगवान वहां पर उपस्थित नहीं होंगे? अवश्य। तो भगवान जो कि आत्मा राम है, कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को किसी भी स्थिति की, किसी स्थान की, किसी वस्तु की, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। तो भगवान उन्होंने इस आत्मा राम अपने पद का परित्याग किया, माता यशोदा के प्रेम को हासिल करने के लिए। तो ये भगवान का सबसे पहला ऐश्वर्य, भगवान ने जिसका परित्याग किया। दूसरा ऐश्वर्य भगवान का है, भगवान को कहा गया है आप्त काम। आप्त काम का अर्थ है कि भगवान हालांकि आत्मा राम है, परंतु भगवान ही कहते हैं कि मैं भक्तों की भक्ति का भूखा हूं। भगवान के अंदर यदि भूख है तो एक ही प्रकार की भूख है, और वो कौन सी भूख है? भक्ति की भूख। भगवान के अंदर, भगवान के भक्तों के जो भक्ति है उनके प्रति, उसकी लालसा बनी रहती है। तो भगवान आप्त काम कहे गए हैं कि भगवान भूखे हैं भक्ति के, परंतु भक्त जब भक्ति भाव से भगवान को जब कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान थोड़ी सी वस्तु से ही संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ी सी वस्तु से। जैसे कि महाभारत में वो कथा है कि दुर्योधन ने दुर्वास मुनि को उनके 60,000 शिष्यों के साथ वन में भेजा, जहां पर युधिष्ठिर अन्य पांडव थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन वहां पर भी उन्हें सुकून से नहीं रहने देने वाला था। द्यूत क्रीड़ा में छल कर दुर्योधन ने वनवास दिला दिया था पांडवों को, परंतु दुर्योधन फिर भी डरा हुआ था। दुर्योधन फिर भी उसके अंदर डर था, क्योंकि एक जो कुकर्मी होता है, एक जो कपटी होता है, उसके अंदर हर समय भय बना रहता है। तो दुर्योधन के अंदर भय था कि ये, क्योंकि ये ईमानदार हैं, सत्यवादी हैं, भगवान के भक्त हैं, तो इनका प्रभाव मेरे ऊपर आएगा कभी न कभी, तो आने से पहले किसी न किसी तरीके से इन्हें खत्म किया जाए। तो दुर्योधन जानता था कि ये जो दुर्वास मुनि हैं, इन्हें यदि जब कोई संतुष्ट नहीं करता तो ये तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, इनका पारा चढ़ा रहता है हर समय, और बस थोड़ी सी कोई बात हो जाए तो दुर्वास मुनि, वो बहुत प्रसिद्ध हैं अपने गुस्से के लिए, क्रोध के लिए। तो दुर्वास मुनि प्रसिद्ध हैं कि वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो दुर्योधन ने दुर्वास मुनि को पहले अपने महल में बुलाया और दुर्वास मुनि की बहुत अच्छी से सेवा की। तत्पश्चात दुर्योधन ने दुर्वास मुनि को ऐसे समय वन में भेजा जिस समय पांडव वो अपना भोजन प्राप्त कर चुके थे और द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था। तो अक्षय पात्र ऐसा था कि कितने भी आ जाएं, द्रौपदी उस अक्षय पात्र से कितनों को भी खिला सकती थी। हजारों लाखों की संख्या में यदि कोई आ जाए तो भोजन प्राप्त हो सकता था उस अक्षय पात्र से, परंतु नियम था कि द्रौपदी जब खा लेगी तो उस दिन द्रौपदी के खाने के पश्चात उस अक्षय पात्र में से कुछ नहीं मिल सकता, फिर अगले दिन ही मिलेगा, ये नियम था। तो दुर्योधन जानता था, तो दुर्योधन ने उस समय दुर्वास मुनि और उनके 60,000 शिष्यों को भेजा जब द्रौपदी खा चुकी थी उस अक्षय पात्र से। तो दुर्योधन का प्रयोजन क्या कि दुर्वास मुनि जाएंगे और द्रौपदी और पांडव जब इन्हें नहीं खिला पाएंगे, जब नहीं खिला पाएंगे तो श्राप मिलेगा। देखो दुर्योधन की कुबुद्धि। तो दुर्योधन ने इस प्रयोजन से दुर्वास मुनि और 60,000 शिष्यों को भेजा। तो दुर्वास मुनि पहुंचते हैं उस समय और युधिष्ठिर महाराज वो तो प्रसिद्ध थे अतिथि सत्कार के लिए। युधिष्ठिर महाराज देखिए ऐसे धर्मराज थे वो, कि युधिष्ठिर महाराज को जब वनवास मिला तो युधिष्ठिर महाराज वो विलाप कर रहे थे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्यों विलाप कर रहे थे। अब हम में से यदि किसी को वनवास हो जाए 13 बरस का, क्या स्थिति रहेगी हमारी। अरे एक दिन का भी वन का वास मुश्किल हो जाता है, यहां 13 साल वनवास यदि किसी को मिलता है तो ये कारण है ना विलाप करने का। परंतु युधिष्ठिर महाराज विलाप क्यों कर रहे थे, कि मैं वन में रहूंगा और रोज मैं जो सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन खिलाता हूं वो मैं कैसे खिला पाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज का विलाप यही था, स्वयं के विषय में कुछ नहीं कि मैं क्या खाऊंगा। हम में से यदि कोई होता तो सबसे पहले अपने विषय में, अरे भाई ब्राह्मण गए भाड़ में, अरे मुझे क्या मिलेगा खाने को उस वन में। परंतु युधिष्ठिर महाराज की यही चिंता कि मैं कैसे इन सब ब्राह्मणों को खिला पाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज वो बहुत प्रसिद्ध थे अतिथि सत्कार के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज वो जैसे उन्होंने दुर्वास मुनि और उनके 60,000 शिष्यों को आता देख युधिष्ठिर महाराज भागे, उनका स्वागत किया और दुर्वास मुनि पहुंचे, उन्होंने कहा कि बहुत भूख लगी है मुझे और मेरे कुछ शिष्य आए हैं। उन्हें क्या कहा उन्होंने, कुछ शिष्य आए हैं, कितने, 60,000। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, आप लोग अभी प्राप्त खाना भोजन लेना चाहेंगे कि स्नान कर आकर। तो दुर्वास मुनि ने कहा कि हम स्नान कर आते हैं और तत्पश्चात आप भोजन प्रसाद तैयार रखना। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, सब तैयारी हो जाएगी। सोचिए यहां पर आप लोग सब कितने होंगे, 600, 700, 800, आप लोगों की प्रसाद की व्यवस्था सुबह से शुरू हो जाती है और ये 7 दिन की सारी तैयारी कितने महीनों पहले चालू हुई थी। तो सोचिए कि हम यहां पर केवल 600-700 दुर्वास मुनि और 60,000, और कितना समय है, स्नान करने मात्र का समय युधिष्ठिर महाराज के पास। और यहां पर वो इतना बड़ा हॉल है, इतना बड़ा किचन है, प्रसादम हॉल है, इतने सारे यहां पर रसोइयां हैं और क्या कुछ नहीं तैयारियां हैं। युधिष्ठिर महाराज के पास था क्या, एक अक्षय पात्र, और वो भी उस दिन द्रौपदी ने उसमें से खा लिया, तो सारा किचन खाली था उस दिन, चूल्हा नहीं जलने वाला था। तो द्रौपदी चिंता में आ गई, और द्रौपदी को चिंता क्या थी कि ये दुर्वास मुनि को यदि युधिष्ठिर महाराज ने जो प्रण दे दिया है पूरा यदि नहीं करेंगे तो ये दुर्वास मुनि श्राप दे देंगे। अरे पहले से ही इतना सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, इसके ऊपर और ये दुर्वास मुनि का श्राप लग जाएगा। तो द्रौपदी को यही चिंता थी। तो द्रौपदी की चिंता जब कभी भी रही तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा है, करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी।
द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए वनवारी,
करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए वनवारी,
करुणा कर द्रौपदी। पट में लिपट गए वनवर।
अरे निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम।
निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम।
बोलो निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम।
निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम।
जय केशव कली मलहारी राधे श्याम श्याम श्याम।
केशव कली बलहारी राधे
श्याम
श्याम।
जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम।
माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे
राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम।
करुणा कर द्रौपदी पुकारी। करुण भावना से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, तुरंत भगवान वहां उपस्थित। भगवान वहां उपस्थित और भगवान इतने नटखट, भगवान सब जानते हैं द्रौपदी ने क्यों पुकारा, सब जानते हैं भगवान। पूरी स्थिति का मुआयना कर आए थे भगवान और जाकर द्रौपदी, जैसे ही द्रौपदी ने भगवान को देखा तो सभी जाकर उन्होंने अपना दंडवत भगवान को दिया। तो भगवान तुरंत द्रौपदी से कहते हैं, ए कृष्णा, द्रौपदी का एक और नाम कृष्णा था, बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है, बड़ी दूर से आया हूं, भूख लगी है कुछ दो खाने के लिए। अब द्रौपदी अब पहले से ज्यादा दुख में पड़ गई। द्रौपदी को पहले से थोड़ा तो दुख था कि दुर्वास मुनि को कुछ हम दे नहीं पाएंगे, युधिष्ठिर महाराज को श्राप लग जाएगा, ये तो दुख था। ये पीड़ा से ज्यादा पीड़ा अब द्रौपदी को होने लगी जब भगवान श्री कृष्ण कुछ मांग रहे हैं और मेरे पास नहीं कुछ देने के लिए। द्रौपदी ये भगवान से नहीं कह रही, अरे भाई आप जानते हैं मैं क्यों बुलाई हूं और यहां पर मजाक सूझ रहा है आपको। द्रौपदी का ये भाव नहीं था, द्रौपदी का ये मनोभाव नहीं था। द्रौपदी सोच रही थी कि अरे मेरे आराध्य प्राणेश्वर भगवान ने कुछ मांगा और वो भी ऐसे समय कि मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। तो भगवान पूछने लगे, द्रौपदी क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ नहीं मेरे मुझे देने के लिए, भूख लगी है मैं कह रहा हूं। तो द्रौपदी ने कहा, भगवान आप सब जानते हैं, आप जानते हैं क्या है मेरे पास। तो भगवान ने कहा, बहुत कुछ है तुम्हारे पास, मैं जानता हूं, तुम्हारे अक्षय पात्र में बहुत कुछ है, लेकर आओ। तो द्रौपदी जानती थी कि भगवान जब जो भी कुछ कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। तो द्रौपदी लेकर आई उस अक्षय पात्र को, परंतु द्रौपदी को दिखाई नहीं दिया, भगवान ने देख लिया। कि साग का एक पत्ता उस पात्र पे चिपका हुआ था। अब देखिए उस अक्षय पात्र का नियम क्या था। उस अक्षय पात्र का नियम था कि द्रौपदी के खाने के पश्चात उस पात्र से और कुछ नहीं उपलब्ध किया जा सकता। तो वो जो साग का पत्ता, वो किसका महाप्रसाद था? द्रौपदी का। क्योंकि इससे पहले द्रौपदी ने ही अब भोजन किया था उससे। तो भगवान ने, जो कि उनके आराध्य प्राणेश्वर हैं, भगवान ने द्रौपदी का झूठा लिया और उसे अपने मुख में डाला। देखिए भगवान का ये गुण कि भगवान भूखे किसी भोजन के प्रति नहीं थे, भगवान वो साग के पीछे भूखे नहीं थे, भगवान भूखे थे द्रौपदी की भक्ति के। तो भगवान ने द्रौपदी की भक्ति उस साग के रूप में चखी, और जैसे ही भगवान ने द्रौपदी की भक्ति उस साग के रूप में चखी, वहां दुर्वास मुनि और 60,000 दुर्वास मुनि के सारे शिष्य, पेट फूल गया सबका, पेट इतना फूल गया सबका कि अचानक सभी को लगा कि ये इतनी भूख लगी थी, अचानक ये पेट इतना फूल कैसे गया, और डकार लेने लगे सभी। दुर्वास मुनि वो स्वयं और सभी 60,000 शिष्य दुर्वास मुनि के एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और उन्हें लगा कि शायद सभी को व्यक्तिगत रूप से लगा कि उन्हीं का पेट फूल रहा है और पेट भर गया। तो सभी एक दूसरे को कहते हैं, तुम चले जाना, मैं थोड़ा बाद में आता हूं। तो दूसरा कहता है, मैं भी रुकता हूं तुम्हारे साथ, बाकियों को जाने दो, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत भरा भरा। अच्छा, तुम्हें भी भरा भरा लगता है? मुझे भी बहुत भरा लग रहा है। तो सारे 60,000 शिष्य एक दूसरे में यही नाते हुए यही चर्चा हो रही, तुम जाओ तुम जाओ, नहीं 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 मुझसे नहीं होगा। और फिर सभी ने निर्णय लिया कि गुरुजी को भेज देते हैं, गुरुजी गुरुजी हमारी तरफ से खा लेंगे। अब गुरुजी की हालत भी वैसी थी, अब गुरुजी भी, तो सभी शिष्य गए, गुरुजी आप आज लीजिए, आज हम आपकी सेवा करते हैं उधर जाकर। नहीं नहीं नहीं, अरे पता नहीं क्या हो रहा है, पेट इतना फूला फूला। अरे आपका भी, आपका भी, हाँ तुम्हारा भी, सबका एक साथ, पता नहीं क्या हो रहा है। और उस समय भगवान पांडवों में से, पांडवों की तरफ भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं और भीम को बुलाते हैं, भीम इधर आओ, तुम्हारी गदा कहाँ है? तो भीम तो तुरंत गदा के साथ, बताओ किसे मारना है? नहीं नहीं, गदा हाथ में रखो, मारना किसे नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, आतुर रहते थे कब मौका मिलेगा गदा चलाने का। तो भगवान ने भीम से कहा कि अपनी गदा हाथ में रखना और वहां जाओ जहां पर दुर्वास मुनि और 60,000 उसके शिष्य स्नान कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा जल्दी बुला कर लेके आओ, कहो कि सब कुछ तैयार है, ठंडा हो रहा है, जल्दी आइए, फीस्ट तैयार है। तो भीम देखते हैं, फीस्ट कहाँ, पहले मुझे बताओ कहाँ है फीस्ट। भगवान ने कहा जाओ जाओ, बुलाओ बुलाओ, सब तैयार हो जाएगी। तो भीम गए अपनी गदा हिलाते हुए, और वहां पर अब दुर्वास मुनि 60,000 शिष्य अभी गुरुजी भीमसेन आ रहे हैं गदा लेकर। तो भीमसेन जी वहां पर पहुंचे, प्रणाम गुरुदेव, दुर्वास मुनि जी और आपके सारे शिष्य, आपको तुरंत बुलाया गया है, गदा हिलाते हुए तुरंत बुलाया गया है, चलिए तुरंत आइए, भोजन प्रसाद तैयार है। तो जैसे ही भीमसेन जी ने अपना ये वाक्य पूरा किया और वाक्य पूरा करने मात्र से देखे तो दुर्वास मुनि और उनके 60,000 शिष्य अदृश्य वहां से भागते हुए दिखाई दिए। तो भगवान इसलिए आप्त काम है कि भगवान केवल थोड़ा बहुत कुछ ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए, स्वयं की संतुष्टि तो दूर, यहां पर 60,000 और दुर्वास मुनि, इनका काम हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निशेचनेन तृप्यन्ति तत्कंध भुजोपशाखा, कि भगवान उनकी तुलना पेड़ के जड़ से की गई है, कि पेड़ के जड़ में जब पानी डाला जाता है तो सारी शाखाएं, टहनियां, पत्ते, फूल, फल सब में पानी पहुंच जाता है। प्राणोपहारा क्षयतेन्द्रियाणाम सर्वार्हणम भजमच्युतेज्य, कि जैसे हम जब पेट में भोजन डालते हैं तो हमारे शरीर के सारे अंग हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? यदि इस उंगली को संतुष्टि चाहिए तो क्या ये उंगली अपने आप संतुष्ट हो सकेगी? मानो ये सारी उंगलियों ने मीटिंग बिठाई, मीटिंग में निर्णय किया, बहुत हो गया इस पेट को खिलाना, रोज ये पेट हमारे बलबूते खाता रहता है, हम उठा उठा के अंदर डालते हैं इसके, कल से बंद, जो कुछ पकेगा हमारे सामने, जो कुछ आएगा हम खाएंगे। कौन कह रहे हैं? उंगलियां। तो मानो गरम गरम गाजर का हलवा, सर्दी का मौसम, मावा डाला हुआ, दूध में पका हुआ गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा खाने के लिए अब ये उंगलियां, जैसे ही गाजर का हलवा आया तो उंगलियों ने एक दूसरे से कहा, बिल्कुल इस पेट को मत देना, अब मीटिंग में हमने प्रस्ताव पास किया है। तो उंगलियां अब उस गाजर के हलवे का आस्वादन करने लगी, कैसे? घूमने लगी गाजर के हलवे के अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, सब जगह पर, उंगलियों की सब जगह पर गाजर का हलवा, गाजर और गाजर का हलवा, मावा गाजर हलवा, मावा गाजर हलवा। और एक उंगली दूसरे से पूछती है, अरे संतुष्टि मिल रही है कि नहीं तुम्हें? अरे कुछ नहीं मिल रहा है, खाली चिपचिप हो रहा है हाथ। दूसरी उंगली पूछती है, अरे मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा, मजा नहीं आ रहा है और गर्म लग रहा है। तो अब सारी उंगलियां एक दूसरे से पूछती हैं, अरे कुछ संतुष्टि मिली? सभी उंगलियां कहती हैं नहीं। तो ये पांचों उंगलियां दूसरी उंगलियों को कहती है, अरे तुम लोग भी आओ। तो सारी दसों उंगलियां अब उसके गाजर के हलवे के अंदर अपने आप को घुमा रही हैं और सभी क्या प्रयास कर रही हैं कि कुछ संतुष्टि मिल जाए, कुछ पोषण हो जाए। नहीं। तब फिर सभी उंगलियों ने एक साथ आकर कहा, हमने बहुत बड़ी गलती की, हम मूर्ख थी, असली संतुष्टि हमारी उसी में है जब हम इसे उठाकर पेट में डालेंगे। तो जब ये पेट में जाएगा हलवा, तब जाकर उंगली हलवा, ये उंगली हिलेगी। तो ये उदाहरण दिया गया है कि जैसे जड़ में पानी डालने से सभी टहनियां, पत्ते, फूल वो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, जैसे पेट में भोजन डालने से शरीर के सारे अंग वो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने से, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने से हम सब के अंदर जो असंतुष्टि है वो पूर्ण होती है। इसलिए कल का कार्यक्रम बहुत विशेष है। आप लोग यदि कल नहीं आने का ठान लिए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूं अपनी डायरी में वो जो प्लान आपने बनाया है कल नहीं आने का, उसे काट दीजिए, क्योंकि कल यदि आप यहां पर मिस कर गए तो आप अपने जीवन भर विलाप करते रहेंगे, पश्चाताप करेंगे, क्योंकि कल श्री श्री राधा गोपीनाथ जी को हम पुष्पों का अभिषेक करने वाले हैं। किसका और कितने पुष्प? अच्छा, सब जानते हैं आप। तो कल का कार्यक्रम हम, जो अंतिम दिवस है हमारी कथा का, कल का कार्यक्रम हम ठीक 5 बजे शुरू करेंगे, ठीक 5 बजे। और कल आप यदि आपके जितने सारे रिश्तेदार, मित्र, परिवार वाले जो बैठकर टीवी देखने वाले हैं, उनको सबको कहो टीवी बंद करें और सबको पकड़ कर लेकर आओ, और आप भी आओ। ज्यादातर होता है सत्संग कार्यक्रम, भागवत कथा, चलो 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 भागवत कथा, बैठो बैठो आगे चलो भागवत कथा में, आगे बैठो, आगे बैठना चाहिए, और आगे बिठा दिया और आप नहीं नहीं तुम आगे बैठो, तुम्हारे लिए जरूरी है सुनना, और प्रभु जी रफू चक्कर। तो जितना ज्यादा हो सके आप अपने इन सभी सगे संबंधी रिश्तेदारों को बुलाइए। बहुत ही सुंदर ये महोत्सव है, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का पुष्प अभिषेक और गोवर्धन पूजा और गोवर्धन लीला, वो उसकी कथा होगी। तो कल आप लोग सब आएंगे कि नहीं? सुन लिया है उन्होंने, भगवान ने सुन लिया है और भगवान ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब आप में और उनमें, आप नहीं आए तो वो देखेंगे आप। तो बहुत ही विशेष कार्यक्रम कल रहेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। ये जो पुष्प अभिषेक है ये बहुत ही एक दिव्य समारोह है, जो देवतागण किया करते थे भगवान के ऊपर, जब भगवान असुरों का वध करते थे तो ऊपर से देवता वो भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते थे, भगवान का अभिषेक पुष्पों से किया करते थे। तो इतने सारे असुरों का वध हुआ है भाई, पुतना का हो गया, शकटासुर का हो गया, तृणावर्त का हो गया, और एक भी पुष्प की वर्षा नहीं हुई है अब तक। तो हमने सोचा कि अंतिम दिवस सभी देवतागण जितने सारे पुष्प का अभिषेक किया करते थे उन सबको एक साथ हम अंतिम दिवस भगवान का अभिषेक करेंगे। और उससे ज्यादा असुरों का वध हुआ है हमारे हृदयों में, कथा श्रवण करने के पश्चात हमारे हृदयों में जो पूतना, शकटासुर, तृणावर्त मंडरा रहे हैं, इन सब का वध हुआ है इन कथाओं के द्वारा। तो इसलिए जब भगवान इन असुरों का वध किए हैं, हमारे हृदयों के अंदर, तो हमें अभिषेक तो करना ही है, भगवान का अनुमोदन तो करना ही है। इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूं ये बोलने के लिए कि कल आप ठीक शाम के, सुबह से आके बैठना है ठीक है, सुबह से आके भी बैठ सकते हैं, ठीक शाम 5 बजे आप लोग अपने आप को और आपके साथ जो भी जिनको भी आप लाना चाहें लेकर आ सकते हैं। तो भगवान है आप्त काम, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कह दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यु उपरितम अश्नामि प्रियतात्मनः। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, जिसमें भगवान ने कहा है, ठीक ठीक बताया है, लिस्ट दिया है कि क्या क्या अर्पित करो। तो भगवान शुरुआत करते हैं कि मुझे यदि संतुष्ट करना है तो कितना सरल है, देखो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। यहां पर भगवान ये भी सिखा रहे हैं कि अन्य देवताओं को संतुष्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हमने देखा कि लोग नंगे पैर कहां कहां चल चल कर जाते हैं, किसी देवता के मंदिर में मिलो नंगे पैर चल चल कर जाकर, और इतना बड़ा बड़ा याग और यज्ञ और होम करना पड़ता है उनको संतुष्ट करने के लिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने कहा केवल एक पत्ता, पत्रम पुष्पम, केवल एक पुष्प, जैसे कि हम एक नहीं कितने 800 किलो करने वाले हैं, भगवान ने तो केवल एक ही कहा है। भगवान ने पत्राणी पुष्पानी फलानी नहीं कहा, भगवान ने कहा केवल एक पत्ता, और सभी पत्तों में सर्वश्रेष्ठ पत्ता कौन सा है, तुलसी का, तुलसी, कोई जिसके तुल्य नहीं वो है तुलसी। तो तुलसी का पत्ता, अरे यदि तुलसी का पत्ता नहीं मिले तो कोई भी पत्ता चलेगा। ज्यादातर लोग जेब से पत्ता निकालते हैं आजकल। परंतु भगवान को चढ़ाने के लिए जेब से जो सबसे सड़े हुआ सड़ा गला जो नोट निकलता है, जो बैंक भी न ले, वो निकाल के भगवान के दान पात्र में डालते। अरे चलो, अरे भगवान को क्या है, भगवान ऐसा रिजर्व बैंक है उसे नया बना लेंगे भगवान। तो कोई सब्जी वाला न ले, कोई रिक्शा वाला न ले, कोई बैंक भी न ले, चढ़ा दो। ये स्थिति है। तो फिर वो क्या देंगे, ठीक है। जो और कोई न ले वो मैं तुम्हें दूंगा, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और कोई लेने के इच्छुक नहीं, लो फिर इसे सड़ो इस भौतिक संसार में उस नोट की तरह। तो भगवान ने कहा केवल एक पत्ता, एक पुष्प। ब्रह्मांड पुराण में एक कथा है कि एक पुरुष था, वो परस्त्री गमन किया करता था, तो रोज वो अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए जाता, और वो रोज अपनी प्रियतमा के लिए एक गुलाब का फूल लेकर जाता। तो एक दिन हुआ ऐसा कि रोज वो नदी को पार कर कर जाता था, तो जिस नदी को वो पार कर रहा था उस नदी में बाढ़ आई हुई थी। क्या आई हुई थी, बाढ़ आई हुई थी। तो जब पार कर रहा था तो नाविक ने भी मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगा इस नदी में आज के दिन। तो ये इतना ज्यादा उत्सुक अपने प्रियतमा से मिलने के लिए गुलाब का पुष्प लिए वो चलना शुरू किया उसने नदी से। तो धीरे धीरे नदी का बहाव बीच में जब बढ़ने लगा तो ये डूबने लगा और इसकी स्थिति ऐसी हो गई कि इसे तैरना नहीं आता था। तैरना नहीं आ रहा फिर भी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो अब जब इसे समझ में आया कि भाई ये पानी इतना बढ़ गया कि अब ये डूबकर मरने वाला है, तो इसने सोचा, बचपन में इसने सुना था वो श्लोक, ये कौन सा श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम दोयम, कि भगवान श्री गोविंद को पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो उसने सोचा कि अब ये प्रियतमा को तो मैं ये गुलाब नहीं दे सकता, मरने वाला हूं मैं, तो उसने वो गुलाब का फूल मरने से पहले आकाश की ओर फेंका, जैसे गजेंद्र ने आकाश की ओर सूंड कर पुष्प अर्पित किया था, आकाश की ओर फेंकते हुए इस व्यक्ति ने भगवान श्री गोविंद को अर्पण किया। ओम इदम पुष्पम गोविंदाय अर्पणम अस्तु, ये कहते हुए, और वो मर गया। तो अब परस्त्री गमन जिंदगी भर इसने किया था, तो यमदूत ले गए इसकी आत्मा को। कहां ले जाते हैं यमदूत, यमदूत कहां ले जाते हैं आत्मा को, यमलोक। याद रखना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, कौन है ये यमदूत और कहां ले जाते हैं। तो यमदूत इसकी आत्मा को ले गए यमराज के पास। तो अब वहां पर जैसे ही किसी आत्मा को ले जाया जाता है तो मार पीट कर वहां पर शुरू हो जाते हैं उसकी, उसका दंड, जो जो कुकर्म उसने किया है। तो अब वहां पर चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त कौन है, वो यमलोक के अकाउंटेंट हैं, सारा रिकॉर्ड रखते हैं वो हम सब का, कि आज इस व्यक्ति ने नासिक में कौन सा कुकर्म किया, नोट डाउन, आज कितनों को झूठ बोला लिख लिया, कितनी दारू पी, कितनी सिगरेट पी, कितनी बीड़ी पी, कितनी पिक्चरें देखी, सब लिखते हैं वो, कौन कौन सी पिक्चरें कितनी बार देखी, और वो भी भागवत कथा चल रही है उस समय जाकर। तो वो सब चित्रगुप्त जी सब कुछ लिखते हैं, सबका लेखा जोखा है उनके पास। तो जो भी आत्मा जब वहां पर ले जाया जाता है उसे, यमदूत जब ले जाते हैं तो सबसे पहले चित्रगुप्त उसका फाइल निकालते हैं कि हाँ ये कलयुग, कलयुग से आया हुआ ये जीव, ठीक है इसका रिकॉर्ड ये है, कोई पुण्य कर्म इसने किया है, कोई पुण्य कर्म नहीं, ले जाओ काम शुरू करो इसका। तो जब इसे ले गए तो ये अब थरथराता हुआ वहां पर यमदूत को देखा, यमदूत ऐसे भयावह दिखने वाले व्यक्ति होते हैं, बड़े लंबे चौड़े और इनके ताम्रवर्ण, इनके केश ताम्रवर्ण के पुतना जैसे जो आजकल लोग कर देते हैं वैसे इनके केश, और आंखें एकदम कोयले के समान जलती हुई और काला इनका रंग, और ऐसे भयानक दिखते हैं। तो ये पहले से डरा हुआ ये यमदूत ले गए, पीट पीट कर ले गए इनके, और चित्रगुप्त, तो जब चित्रगुप्त के सामने इस व्यक्ति को खड़ा किया तो चित्रगुप्त ने इसकी फाइल निकाली, फाइल निकाली और देखा, रोज रोज गए थे उससे मिलने के लिए, तुम्हारे उस प्रियतमा से सब लिखा हुआ है, कौन से समय गए, कितना समय बर्बाद किया उसके साथ तुमने, सब कुछ लिखा हुआ है। इसके कैसे पता भाई ये समय मैं गया था, ये क्या, कौन सा कैमरा फिट किया था इसमें। तो चित्रगुप्त सब फाइल में से देख रहे थे, हर दिन इसने क्या क्या कुकर्म किए। और सब देखने के पश्चात चित्रगुप्त ने यमदूत से कहा, ले जाओ इसे कुंभीपा तप्त सूरमी इन सब में ले जाओ, पकाओ, काटो, मारो। तो सारे यमदूत अब पकड़े, हाँ बस यही सुनना था उन्हें, चलो अब ड्यूटी शुरू। परंतु चित्रगुप्त वो पढ़ते 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 जो अंतिम कर्म इसने किया था वो उन्हें दिखाई दे गया। अरे रुको 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 रुको, तो सारे यमदूत रुक गए, अरे क्या हुआ, रुक जा रुक जा रुक जा। हालांकि इसने जीवन भर सब कुकर्म किए, परंतु मरने से पहले इसने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो यहां पर मैंने लिखा है। रुको रुको, क्या किया इसने, मरने से पहले इसने एक गुलाब का फूल इदम गोविंदाय अर्पणमस्तु कहते हुए भगवान श्री गोविंद को अर्पित किया था। तो केवल कुछ एक मिनट इसे लगा वो अर्पित करने के लिए, तो एक मिनट का सत्कर्म हुआ इससे, भक्ति का कर्म हुआ। तो भाई क्या परिणाम है उसका, परिणाम यही है कि इसे स्वर्ग के द्वार का दर्शन करा के ले आना। फिर जो इसने ये थोड़ा अच्छा कर्म किया है, इस अच्छे कर्म का फल इसे इतना ही मिलेगा कि एक मिनट भगवान को फूल अर्पित करने का अच्छा फल उस कर्म के, यही है कि ये केवल स्वर्ग के द्वार का दर्शन कर फिर से यम की यातनाएं। तो इसे ले गए स्वर्ग के द्वार, खुद स्वर्ग का द्वार दर्शन कराने के लिए। तो ये वहां पर यमदूत पकड़े हुए हैं, तो इसने सब देख लिया था, जान लिया था कि क्यों इसे स्वर्ग के द्वार के पास ले जाया गया है दर्शन कराने के लिए। अब स्वर्ग के द्वार का दर्शन भी किसी को हो जाए तो वो भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो ये वहां पर तो यमदूतों ने पूछा था कि इसे कितने समय तक दर्शन कराना है वो भी बता दो। तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसे दो मिनट तक दर्शन कराना स्वर्ग के द्वार का, और फिर पकड़ कर ले आना। तो उन्होंने अपना टाइम सेट कर लिया था अपनी घड़ियों में, और पकड़कर स्वर्ग के द्वार के सामने वो देख रहे थे, देख लो दो मिनट है केवल तुम्हारे पास, ठीक से देख लो इसे। तो वो भी इनकी घड़ी को देख रहा था, कांटा चल रहा था, मिनट का कांटा चल रहा था, इसके पास केवल दो मिनट। तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि स्वर्ग का द्वार इतना भव्य, इतना सुंदर, और स्वर्ग के द्वार के सामने दो द्वारपाल, बड़े सुंदर दिखने वाले द्वारपाल, बड़ी अच्छे वेशभूषा में, और उनके पास तलवार थी एक, और स्वर्ग के द्वार के बाहर एक उद्यान था, और उसने देखा उन उद्यानों में गुलाब के फूल उगे हुए थे। तो एक घड़ी के कांटे की तरफ देख रहा है। अब जैसे ही इसका एक मिनट खत्म होने वाला था, इसने छलांग लगाई, वो द्वारपाल की तलवार खींच ली, और जितने भी उद्यान में उस सारे गुलाब के पुष्प थे उन्हें काटने लगा, और काटते हुए चिल्लाने लगा, ओम केशवाय अर्पणमस्तु इदम पुष्पम, ओम गोविंदाय अर्पणमस्तु इदम पुष्पम, ओम मुकुंदाय अर्पणमस्तु। और एक ही छलांग में उसने तलवार निकाली और वहां के बाहर के द्वार के बाहर के उद्यान के जितने भी गुलाब के पुष्प थे कुछ पांच एक पुष्प वो अर्पित कर पाए तो सभी यमदूत एक क्या कर रहा है। चित्रगुप्त ने रिकॉर्ड कर लिया तो तुरंत ये व्यक्ति यमदूतों को कहता है पूछो पूछो फोन कर चित्रगुप्त से कितने फूल हुए कितने फूल अर्पित हो गए। तो उन्होंने तुरंत पूछा अरे भाई ये क्या पूछ रहा है। चित्रगुप्त ने कहा हाँ नोट कर लिया 6 फूल अर्पित कर दिए इसने तो अब क्या अंदर ले जाओ स्वर्ग के अंदर कितने समय कुछ 10 मिनट अंदर रखना अब तो अब 10 मिनट उसका फल क्या मिला उसे 10 मिनट स्वर्ग के द्वार के अंदर। अब इसके पास 10 मिनट तो जितने भी स्वर्ग के अंदर के उद्यान के जितने भी फूल थे वो फूल एक एक करके ओम इदम पुष्पम गोविंदाय अर्पणमस्तु इदम पुष्पम मुकुंदाय अर्पणमस्तु 10 मिनट में उसने इतने सारे पुष्प अर्पित कर दिए तो वो अपने मिनट बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया और अंततः स्वर्ग के जितने भी गुलाब के पुष्प थे सारे गुलाब के पुष्प उसने अपने मिनट बढ़ाते 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 अर्पित किए और अंततः यमदूत खड़े के खड़े रह गए। उन्होंने चित्रगुप्त को फोन किया और पूछा कि भाई अब हम क्या करें। तो चित्रगुप्त ने इनसे कहा तुम लोग आ जाओ वापस आ जाओ। वो अब जाता रहा हमारे हाथ से वो अब जाता रहा अब छोड़ दो उसे उधर स्वर्ग में। तो वहां पर जितनी भी अवधि उसकी थी बाकी उसने हर एक क्षण केवल यही किया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। उसने इसलिए वो एक पुष्प उसने जो अर्पित किया था अपने मरते समय तो वो एक पुष्प उसने अर्पित किया उसके वजह से उसकी सदगति यहां तक पहुंची कि उसे वैकुंठवास मिला। तो कल हम कितने पुष्प अर्पित करने वाले हैं ८०० किलो। तो यदि आप लोग चाहते हो कि आपके हाथों से भी ये भक्ति का कार्य हो संपन्न तो आप लोग उन फूलों की पंखुड़ियों को निकालने के लिए यहां पर आ सकते हो। यहां पे होने वाला सुबह 11 बजे ताजे फूल आने वाले हैं बंबई से और वृंदावन से भगवान के निज धाम से भी आए हैं। तो यदि ये ब्रह्मांड पुराण की कथा है यदि आपको उस व्यक्ति की तरह अपनी सदगति आप चाहते हो तो अपने हाथों से यदि आप उन पुष्पों की पंखुड़ियों निकालोगे क्या कहते हुए इदम पुष्पम ओम गोविंदाय अर्पणमस्तु तो जितने ज्यादा फूलों को आप ये कहते हुए भक्ति भाव से निकालोगे वो कल भगवान को अर्पित होंगे और भगवान को अर्पित होंगे तो कौन नोट डाउन कर लेगा और फिर क्या होगा स्वर्ग नहीं वैकुंठवास मिलेगा। क्या मिलेगा वैकुंठवास। और ये मजाक की बात नहीं है इसे आप मजाक में मत लीजिए ये स्वयं भगवान कहे हैं अपने मुख से। तो कितने लोग आएंगे कल सुबह 11 बजे तो बाकी लोग नहीं चाहते हाँ चिंता मत कीजिए, आपके लिए प्रसाद भोजन भी है, तो आप यहाँ पर वो सेवा करते हुए प्रसाद भी पा सकते हैं और फिर कल का पूरा दिन आप भगवान की सेवा में बिताइए। हाँ तो ये भी आपने हाथ उठा दिया इनके सामने, अब इनमें और आपके बीच में। हाँ तो भगवान जो कि आप तक काम है, भगवान आप तक काम है कि भगवान केवल यहां पर कहा गया है कि केवल पत्राणी, केवल एक पत्र, एक पुष्प, एक फूल और थोड़ा सा जल, केवल इतना भगवान लेने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो आप्त काम है। तो भगवान सोच रहे थे, भगवान सोच रहे थे कि माता यशोदा मुझे अपना स्तनपान करा रही है, तो माता यशोदा रोज स्तनपान कराती थी अपना कृष्ण को, तो माता यशोदा स्तनपान जब करा रही है तो भगवान को संतुष्ट हो जाना चाहिए था थोड़े से स्तनपान से। तो उस समय हुआ क्या कि माता यशोदा जब स्तनपान करा रही थी तो रसोई घर में माता यशोदा ने वो पद्म गंध दूध उसे उबालने के लिए रखा था। दिवाली का दिन था, माता यशोदा मिठाइयां बनाना चाहती थी तो वो दूध उबालने के लिए रखा था। तो जब दूध उबल जाता है तो उसकी गंध आती है कि नहीं, तुरंत समझ में आ जाता है कि दूध उफन रहा है। तो माता यशोदा को उसकी गंध आ गई कि रसोई घर में जो पद्म गंध दूध रखा हुआ है वो उफन रहा है। तो माता यशोदा ने फिर सोचा कि यदि मैं भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराती रहूंगी तो वो दूध उफन कर गिर जाएगा, और वो दूध कौन सा दूध है, ऐसा उत्कृष्ट दूध है और वो इन्हीं की सेवा के लिए वहां पर उबाला गया है। तो माता यशोदा यहां पर देखिए, एक भक्त कितना चतुर होता है माता यशोदा दिखा रही है कि भक्त को यह पहचान लेना चाहिए कि कौन सी भगवान की सेवा पहली करनी चाहिए और कौन सी सेवा बाद में करनी चाहिए। माता यशोदा सिखा रही है कि माता यशोदा ने सोचा कि जो अंदर का दूध है उसे यदि मैं अभी नहीं बचाऊंगी तो वो दूध बहता चला जाएगा। मेरा दूध तो है ही कृष्ण के लिए हर समय। तो माता यशोदा अब अपनी बुद्धि लगा रही है कि कृष्ण की सेवा में कौन सी सेवा पहले करनी चाहिए, कौन सी सेवा बाद में करनी चाहिए। दोनों कृष्ण की सेवा, ये भी दूध कृष्ण को ही पिला रही है अपना स्वयं का, और वो भी दूध जो उबल रहा था रसोई घर में वो भी कृष्ण को ही अर्पित करने के लिए था। परंतु दोनों सेवाओं में से माता यशोदा ने अपनी बुद्धि लगाई कि पहले मैं उस दूध को बचाती हूं और उस दूध को बचाने के लिए मुझे ये दूध रोकना होगा। तो माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को नीचे रख दिया। इसलिए कहा गया है जे कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, जो भगवान श्री कृष्ण को भजता है वो सबसे चतुर व्यक्ति है, क्योंकि वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनकी पूजा कर रहा है, इसलिए वो सबसे बड़ा चतुर है। और इसके विपरीत कहा गया है, कहा यह गया है जे कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, जे कृष्ण त्यजे, त्यजे का अर्थ क्या है, जो त्याग देता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को, जे कृष्ण त्यजे स बड़ो कुकुर, पहली पंक्ति में है से बड़ो चतुर, જે કૃષ્ણ ભજે સે બડો ચતુર, જે કૃષ્ણ ત્યજે સે બડો કુકુર. કુકુર કોણ હે? કુત્તા. શાસ્ત્ર ને કહા જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કી ભક્તિ કો છોડ દેતા હૈ સે બડો કુકુર. તો ઇસલિયે યદિ હમે ચતુર બનના હૈ તો હમે ક્યા કરના હૈ? ઇન ભગવાન કી ભક્તિ મે લગના હૈ. તો માતા યશોદા ને અપને કન્હૈયા કો ફિર નીચે સુલાયા ઔર વો ગઈ ઉસ દૂધ કો સંભાલને. तो जीव गोस्वामी पाद ये पूछते हैं कि जैसे कि हमने इसकी चर्चा कल की कि आध्यात्मिक संसार में कोई वस्तु नहीं, हर एक व्यक्ति है. तो वो जो दूध रसोई घर में पद्मगंध दूध, वो एक व्यक्ति है. तो वो दूध क्या सोच रहा था? वो दूध सोच रहा था कि अरे मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, जल जल कर आग में जल जल कर मैं गर्म हो रहा हूं. किसके लिए? उन भगवान की सेवा हेतु मैं अपने आप को जला रहा हूं इतना. और यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि ये माता यशोदा अपना दूध पिलाई जा रही है. तो ये भगवान जो अनंत हैं और ये माता यशोदा का प्रेम अनंत है, तो ये क्या मेल हुआ? भगवान अनंत, माता यशोदा का प्रेम अनंत, तो माता यशोदा का दूध अनंत. तो यदि अनंत अनंत भक्त प्रेम का अनंत दूध पीते रहेंगे तो अनंत काल तक ये क्रिया चलती रहेगी. तो भाई मेरे जल जल कर तपस्या करने का क्या फायदा? तो दूध ने सोचा कोई फायदा नहीं मेरे जीवन का, क्या जीवन है ये. इसलिए उस दूध ने सोचा कि चलो आत्महत्या कर लेते हैं. तो दूध उबलने लगा, उबलकर आत्महत्या करने हेतु सती बनने अग्नि में वो कूदने के लिए दूध ये सोच रहा था. तो दूध ये सोच रहा था तो माता यशोदा ने भगवान को नीचे रख दिया और माता यशोदा भागी अब उस दूध को पकड़ने के लिए, बचाने के लिए. तो यहां पर भगवान अब अतृप्त, छोड़ दिया मुझे, स्तनपान कराने से छोड़ दिया मुझे. अब देखिए ये भगवान जो आप्त काम है, संतुष्ट हो जाना चाहिए था ना, इतने समय रोज तो पिला रही है. और भगवान स्वयं ही कहे हैं थोड़ा सा जल, और यहां पे कितना तो दूध पिला दिया माता यशोदा ने. तो कोई यदि भगवान से कहे आप ही ने तो कहा है तो संतुष्ट हो जाओ, ये अतृप्ति क्यों दिखा रहे हो? भगवान ने कहा नहीं, जब माता यशोदा जैसी मेरी भक्त जब अपना स्तनपान कराती है तो मुझे बहुत मात्रा में चाहिए. तो भगवान ने अपनी ये पदवी को त्याग दिया. तो मानो भगवान माता यशोदा को ये कह रहे थे कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं क्षीर सागर छोड़ के आया हूं, दूध का सागर छोड़कर तुम्हारा पुत्र बना और तुम ये एक दो किलो दूध के पीछे भाग रही हो. कहां दूध का सागर उसको छोड़ा मैंने, और कहां तुम मुझे छोड़कर एक दो किलो दूध के पीछे भाग रहे. इसलिए भगवान अतृप्त, वो जो कि आप्त काम है वो अतृप्ति दिखाने लगे. तो ये दूसरा ऐश्वर्य भगवान ने जिसका परित्याग किया, आप्त काम होने का ऐश्वर्य. त्रिगुणातीत, भगवान को त्रिगुणातीत कहा गया है. भगवान कहते हैं त्रिभीर गुणमयर भावैर ए भी सर्वम इदम जगत. मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। कि पूरा संसार तीनों गुणों से भरा हुआ है। कौन से हैं तीन गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो तीन गुण हैं ये सर्वव्यापी हैं भगवान की तरह। तो भगवान ने कहा कि सभी जीव इस भौतिक संसार में इन तीन गुणों के वशीभूत हैं, परंतु मैं इन तीनों गुणों के परे हूं। भगवान त्रिगुणातीत हैं, इन तीनों गुणों के परे हैं भगवान। परंतु यहां पर अब देखिए, भगवान हालांकि तीनों गुणों के परे हैं, परंतु भगवान माता यशोदा के प्रति क्रोध कर रहे हैं। कैसा? कि भगवान अब सोचने लगे कि ये माता सब कुछ मैं छोड़ छाड़ कर आया सब प्रेम लेने के लिए, और ये मुझे छोड़कर वो एक दो किलो दूध के पीछे भाग रही है। तो भगवान अब क्रोध अवस्था में आ गए। संजात कोप स्फुरितारुणाधरम। इतने क्रोधित भगवान हो गए कि भगवान ने अपने दांतों से अपने होंठों को दबाना शुरू किया। संजात कोप स्फुरितारुणाधरम। इतने क्रोधित भगवान, जैसे कोई व्यक्ति जब क्रोध में आता है तो क्रोध अवस्था में उसका चेहरा देखो तो समझ में आ जाता है कि पारा चढ़ रहा है। और आजकल तो कलयुग में कोई आवश्यकता ही नहीं ये पारा चढ़ाने की, चढ़े हुए रहता है हर समय। क्रोध अवस्था में बंबई शहर में यदि आप जाओ तो सब लोग ऐसे वो पारे के ऊपर ही बैठे रहते हैं। वो ट्रेनों में यदि आप जाओ तो ट्रेनों में यदि आपने किसी को स्पर्श कर दिया, जैसे बहुत खाली रहती है ट्रेन, आपने यदि किसी को स्पर्श भी कर दिया तो वहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ जाएगा। तुमने मुझे स्पर्श किया, तुम्हारी हिम्मत, तुमने मुझे स्पर्श किया, नीचे उतरो। वो इसलिए बोलता है क्योंकि नीचे तो कोई उतर सकता नहीं। नीचे उतरो तुम्हें मैं बताता हूं। क्रोध ऐसा सबके नाक के ऊपर बैठा रहता है, सब जगह बैठा रहता है आजकल। एक समाचार पत्र में एक घटना बताई गई थी बंबई में कि पतिदेव आए ऑफिस से घर पर। तो घर पर आए तो थके एकदम, तो पत्नी भी काम करने वाली, बाहर ऑफिस में जाकर काम करने वाली थी, तो वो भी उसी समय दोनों घर पर आए। तो पति ने कहा चाय बनाओ जल्दी। तो पत्नी ने कहा क्या मैं वेटर हूं क्या यहाँ पे? आकर सीधा बैठ गए, ऑर्डर दिया चाय बनाओ, क्या होटल है ये? उसने कहा तो शादी क्यों की? ऐसे शुरुआत होता है ना, शादी क्यों की? तो पत्नी कहती है क्या चाय बनाने के लिए शादी की थी? अरे तो किसी चाय वाली से शादी करते। आते चाय बनाओ। तो पतिदेव, मैं यहां पर पति हूं इस घर का, मैं जो कहता हूं उसका पालन होना चाहिए। अच्छा, और मैं कौन हूं? तुम पत्नी हो, और कौन हो? अरे जैसे तुम 9 से 5 काम करते हो, मैं भी 9 से 5 काम करती हूं, केवल तुम्हारा ही पैसा घर पर नहीं आ रहा, वो चाय पत्ती मेरे भी पैसे से खरीदी गई है, जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। चाय को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं, इसलिए हमने छोड़ दिया पीना। तो दोनों अब एक चाय के कप को लेकर दोनों के अंदर महाघमासान युद्ध। कहते तुमने शादी क्यों की? तुम्हें तो मैं छोड़ दूंगा, तलाक अभी, चलो कोर्ट में चाय पीने से पहले। तो अब दोनों एक चाय के प्याले के पीछे कोर्ट में जाने के लिए, तो फिर पहले तो वाणी से बाण चल रहे थे, वाग्बाण चल रहे थे, फिर हस्त बाण चलने लगे एक दूसरे के ऊपर, ये वो। तो वो पति ने उस पत्नी को बालकनी में ले गया और वहां से नीचे पटक दिया। ये सत्य घटना। इसलिए इससे क्या सीखना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। आगे का कारण मैं नहीं दूंगा, और एक तरीका है वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो और एक और घटना ऐसी हुई कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ और बालकनी में ले जाकर वहां से पटक दिया। तो जैसे ही पत्नी को पटक दिया पति ने, पति भागा घर से बाहर, बालकनी से उतरकर भागा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन भागा, जाके पुलिस को कहता है, पुलिस 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 मुझे अंदर बंद कर लो, जेल में बंद कर लो। अरे पुलिस ने कहा, क्यों भाई, खुद आकर जेल में क्यों बंद होना चाहते हो? मैंने पत्नी को बालकनी से ऊपर से ढकेल दिया। अरे तो मर गई? हाँ, इसलिए तो जेल में बंद करो, मरी नहीं वो। तो वो कुछ करने से पहले तुम मुझे अंदर बंद कर दो। इसलिए यदि पति पत्नी में झगड़ा भी हो तो बालकनी में मत जाना। ये भी एक समस्या का उपाय है। तो क्रोध इतना आजकल देखा गया है। तो भगवान यहां पर, और क्रोध ये रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। तो भगवान मानो माता यशोदा के ऊपर क्रोध दिखा रहे हैं, तो भगवान मानो रजोगुण और तमोगुण के अधीन अपने आप को हुआ दिखा रहे हैं। हालांकि भगवान त्रिगुणातीत है, परंतु भगवान सभी देवताओं को दिखा रहे हैं। एवं संदर्शित यंग, सब लोग दर्शन कर लो, मैं जो बंधा हुआ हूं यहां पर, मैंने क्या किया, या त्रिगुणातीत तुम मुझे कहते हो, मैं गुस्सा हो रहा हूं, क्रोधित हो रहा हूं माता यशोदा का स्तनपान करने के लिए। तो भगवान ने त्रिगुणातीत होने का ये पद त्याग दिया। और भगवान के अंदर क्रोध लेश मात्र भी नहीं है देखा जाए तो। इसकी एक कथा है कि एक बार सारे ऋषिगण देवतागण बैठे थे और ये मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि ये जो तीनों गुण अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से कौन प्रमुख है, इनमें से कौन है जो त्रिगुणातीत है। तो भाई कैसे जाना जाए कि कौन त्रिगुणातीत है इन तीनों में से, तो परीक्षा ली जाए तीनों की। तो उस समय भृगु मुनि वहां पर आए, तो भृगु मुनि को कहा कि हाँ इन्हें भेजते हैं। ये भृगु मुनि थोड़ा ऐसे ऐसे धुरंधर कार्य कर सकते हैं, तो इन्हें भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। क्या परीक्षा लेनी है कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है और त्रिगुणातीत है तीनों गुणों के परे। तो भृगु मुनि जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने हेतु जाते हैं ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मा जी अपनी अर्धांगनी के साथ बैठे हुए, कौन है उनकी अर्धांगनी, सरस्वती, उनके साथ बैठे हुए विहार कर रहे हैं और भृगु मुनि बिना खटखटाए बिना बताए घुस पड़े अंदर। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये उद्दंड बालक, ब्रह्मा जी ने कुछ मुंह से कहा नहीं बल्कि मन में क्रोधित हुए कि अरे कोई अकल है कि नहीं, पूछ के आना चाहिए अंदर, ऐसे ही घुसे चले आ रहा है। तो ब्रह्मा जी उन्होंने मुख से कुछ कहा नहीं बल्कि उनके चेहरे पर क्रोध दिख गया। तो भृगु मुनि ने तुरंत SMS किया, फेल, ब्रह्मा जी फेल, क्रोध आ गया, मुंह पे दिख रहा है क्रोध। हालांकि ब्रह्मा जी ने कुछ कहा नहीं परंतु क्रोध अवस्था में आ गए थे। तो उसके पश्चात अब शिवजी की परीक्षा के लिए भृगु मुनि गए। तो शिवजी की परीक्षा के लिए जब गए तो जैसे ही कैलाश धाम पहुंचे तो शिवजी पार्वती के साथ बैठे हुए थे, और जैसे ही भृगु मुनि वहां पर पहुंचे तो शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि अरे हमारे भाई आए हैं। तो तुरंत शिवजी अपना त्रिशूल और डमरू ये सब कुछ छोड़ते हुए भागे भृगु मुनि को आलिंगन करते हुए। तो जैसे ही भागे तो भृगु मुनि कहा, ए रुक जाओ, पास में मत आओ, क्या है ये सब स्मशान भूमि की भस्म लगाए हुए, पता नहीं कब नहाया था, और ये सब जगह पे सर्प और खोपड़ी की माला और दूर दूर। जानबूझ के भृगु मुनि कह रहे थे ऐसे वाक्य उनको उकसाने के लिए, क्योंकि भृगु मुनि जानते थे कि शिवजी को उकसाना है तो कुछ वाक्य बोलने पड़ेंगे। तो ऐसे वाक्य कहे, दूर रहो। तो शिवजी जब उन्होंने सुना ऐसा अपराध, त्रिशूल कहां है, त्रिशूल ले लिया पार्वती जी ने, अरे 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 नहीं नहीं ये मत करना, ये मत करना, बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, अपराध हो जाएगा, ब्रह्म हत्या हो जाएगी, मत करो मत करो। तुरंत भृगु मुनि कहते हैं सभी ऋषि मुनि से, ये भी त्रिगुणातीत नहीं, फेल हो गए। फिर बचे विष्णु जी, अब तो गए क्षीर सागर जहां पर विष्णु अपने अनंत शेष की शैया पर लेटे हुए लक्ष्मी देवी पैर दबा रही है। तो भृगु मुनि वहां पर पहुंचते हैं और भागते हुए सोए हुए भगवान विष्णु की छाती पर लात मारते हैं और कहते हैं उठो, दिन भर सोते रहते हैं। ये भृगु मुनि ने कहा, कुछ काम नहीं यहां, सारी दुनिया कौन चलाएगा, सोना सोना सोना, उठो, और लात मारी अपनी लात विष्णु के छाती पर। सोचिए, ब्रह्मा जी से कुछ कहा नहीं, केवल व्यवहार ऐसा किया कि ब्रह्मा जी गुस्सा हुए। शिव जी के साथ वाक्यों को ऐसा कहा कि शिव जी गुस्सा हुए। सोचो, यहां पर केवल व्यवहार नहीं, केवल वाक्य नहीं, बल्कि अपने पैर छाती पर जोर से धसाए। तो विष्णु वो तुरंत उठे और तुरंत उन्होंने भृगु मुनि के चरणों को सहलाने लगे। तो भृगु मुनि पूछते, ये क्या कर रहे हो, नहीं शायद आपके चरणों को चोट पहुंच गई होगी, मेरी छाती बहुत कठोर है, आप छाती पर क्यों मारे मुझे, ये छाती पर, मेरी छाती बहुत कठोर है, शायद आपके तलवों को लग गई होगी, थोड़ा आप बैठिए, मैं पहले आपके तलवों को दबा दूं, दर्द दूर हो जाए आपका, फिर हम बात करते हैं। तुरंत भृगु मुनि उन्होंने उनके चरणों पर गिर गए, क्षमा करना प्रभु, मैं केवल आपकी परीक्षा कर रहा था, ये केवल इन्होंने मुझे भेजा था, परीक्षा हेतु मैं आया था। यही त्रिगुणातीत हैं, केवल व्यवहार नहीं, वाक्य नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से इतना उकसाया परंतु क्रोध लेश मात्र भी नहीं उनके अंदर। तो वो विष्णु जिनके स्रोत हैं ये श्री कृष्ण, ये यहां पर क्रोधित हो रहे हैं। संजात कोप स्फुरितारुणाधर संदश्य दद्भिर दधिमंथ भाजनम, और क्रोध अवस्था में उन्होंने किया क्या, पत्थर उठाया, मटका फोड़ दिया माखन का, दही का, माखन का मटका जो रखा हुआ था वो सब फोड़ दिया। गुस्से में व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है ना, कुछ फेंकना चाहता है, कुछ ये बोलना चाहता है, तो भगवान ने क्रोध में एक किया। तो यहां पर देखिए भगवान अपने दांतों से, भगवान अपने होंठों को दबा रहे थे। तो भगवान ये दर्शा रहे थे कि भगवान के जो उजले उजले दांत हैं, भगवान ने अपने उजले उजले दांतों से अपने लाल लाल बिंब फल के समान लाल लाल होंठों को भगवान ने दबाना शुरू किया। आजकल हम देखते हैं लोगों के अंदर उल्टा है, होंठ सफेद सफेद बीड़ी फूंक फूंक कर और दांत लाल लाल गुटखा खा खा कर। तो स्थिति ये है, दांत लाल हैं और ये जो होंठ हैं ये पूरे सफेद सफेद फूंक फूंक कर। परंतु भगवान की सुंदरता बताई गई है कि एकदम उजले उजले भगवान के दांत और भगवान के होंठ एकदम बिंब फूल के बिंब फल के समान एकदम रसीले। तो भगवान अपने श्वेत दांतों से अपने रक्त वर्ण होंठों को दबा रहे थे। तो भगवान ये दिखा रहे थे कि यदि रजोगुण पर प्रभुत्व जमाना है तो सत्व गुण होना होगा। तो जो श्वेत दांत हैं वो प्रतीक है सत्व गुण के, और जो एकदम लाल लाल होंठ वो प्रतीक है रजोगुण के। तो भगवान दिखा रहे हैं कि यदि हमारे जीवन में हमें रजोगुण पर विजय प्राप्त करनी है तो सत्व गुण लाना होगा हमारे जीवन में, ये भगवान दिखा रहे थे। तो भगवान ने क्रोध अवस्था दिखाई अपनी, ये मटका फोड़ दिया। तो ये तीसरा ऐश्वर्य, इसका परित्याग भगवान किए कि हालांकि ये सारे देवता जानते थे कि ये भगवान त्रिगुणातीत है, परंतु यहां पर भगवान माता यशोदा का प्रेम प्राप्त करने हेतु भगवान ने उसका भी परित्याग कर दिया। चौथा ऐश्वर्य, भगवान को कहा गया है लक्ष्मी के पति। इस भौतिक संसार में सभी लक्ष्मी के पीछे पागल हैं। हाँ, लक्ष्मी पूजन जोरदार धूमधाम से मनाया जाता है ताकि लक्ष्मी घर में आए, सारी खिड़कियां खोली जाती हैं, कोई भी खिड़की से लक्ष्मी आएगी और फिर चली भी जाएगी दूसरी खिड़की से। तो लक्ष्मी पूजन और लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हो, सब प्रार्थनाएं करते हैं। तो सोचिए ये हैं लक्ष्मी के पति, तो सोचिए जो लक्ष्मी के पति हैं उनको कितना दहेज मिला होगा, और वो भी कितने लक्ष्मियों के, एक लक्ष्मी के नहीं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा है कि केवल एक लक्ष्मी नहीं, केवल दो लक्ष्मी नहीं, सहस्त्र हजारों लक्ष्मी के पति हैं ये, और ये सारी लक्ष्मियां सेवा में रत हैं इनके। तो ये लक्ष्मी पति हैं, परंतु यहां पर अब अपने ही घर में माखन की चोरी करने लगे। उस दिन भगवान ने माता यशोदा को सबक सिखाने हेतु, कि ये माता यशोदा अब तक केवल शिकायत सुन रही थी कि मैं दूसरों के घरों में चोरी करता हूं, आज मैं अपने ही घर में चोरी करूंगा, तो देखो ये माता यशोदा क्या, इसको कैसा सबक मिलेगा। तो भगवान जो लक्ष्मीपति हैं अपने ही घर में माखन चोर बन गए, अपने ही घर का माखन चोरी करने लगे। अब देखिए भगवान का जो ये नाम है लक्ष्मीपति होना, भगवान अपने गुणों से दर्शा रहे हैं, उन्होंने लक्ष्मियों के साथ विवाह किया और लक्ष्मी उनकी सेवा में रत हैं। कई बार इस भौतिक संसार में किसी का नाम होता है लक्ष्मीपति, होगा रोडपति, नाम है लक्ष्मीपति, लेकिन इसे बोलते हैं ना आंख से अंधे नाम है नयन सुख। आंख से अंधा है और नाम पूछो तो पद्मलोचन। परंतु भगवान लक्ष्मीपति के साथ गुण भी उनके हैं, परंतु इसका परित्याग कर रहे हैं और भगवान एक चोर बन रहे हैं, अपने ही घर में चोरी। चुरा चुरा नवनीत जो खायो, ब्रज बनितन पाए नाम धरायो। चुरा चुरा नवनीत जो खायो, ब्रज बनितन पाए नाम धरायो।
चुड़ा नवनीत जो खायो, ब्रजवनी संकय नाम धरायो।
बोलो माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम।
माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम।
बोलो माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम।
माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम।
जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम।
जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम।
जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम।
माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे
श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे
श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम
श्याम।
चुरा चुरा नवनीत जो खायो, माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम। भगवान अपने इस नाम को ज्यादा पसंद करते हैं। कौन से नाम को? माखन चोर। लक्ष्मीपति भी भगवान का नाम है, परंतु लक्ष्मीपति से ज्यादा भगवान अपने आप को माखन चोर कहलाना पसंद करते हैं। क्योंकि माखन चोर ये जो नाम भगवान का है, इसमें भगवान की ब्रजलीला छिपी हुई है। अब देखिए, कोई व्यक्ति, उसका यदि आप परिचय दो, जैसे कि कथा की शुरुआत में हमारे परिचय दिया गया था, तो मानो प्रभु जी खड़े होकर मेरा परिचय देना शुरू कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आज से हम भागवत कथा शुरू कर रहे हैं और हमारे कथाकार, इनका परिचय हम देना चाहेंगे। बचपन में इन्होंने बहुत पेंसिलों की चोरी की थी। शुरुआत इन्होंने पेंसिल चोरी कर कर की अपने करियर की शुरुआत। फिर पेंसिल के साथ रबर चोरी करना शुरू किया, खिलौनों की चोरी करना शुरू किया। तो ऐसा परिचय कैसा लगेगा मेरा आपको? अभी कथा करते हैं भागवत की, लेकिन बचपन में चोरियां बहुत किया करते थे। तो कथाकार का स्वागत है, आप लोग सुनिए इनसे। कैसा लगेगा ये परिचय? तो भगवान, देखिए भगवान ने आगे चलकर कैसे कैसे पराक्रमी कार्य किए। भगवत गीता सुनाई, भगवान द्वारकाधीश बने, मथुराधीश बने, भगवान इन सारे असुरों का वध किया। भगवान ने क्या कुछ नहीं किया, धर्म की स्थापना। परंतु भगवान का परिचय यहां पर भागवत में कैसे दिया गया है? माखन चोर हरे कृष्णा। भगवान का परिचय दिया गया है माखन चोर, जिन्होंने बचपन में माखन की चोरी की। परंतु भगवान का गुणगान होता है उस परिचय से। भगवान चाहते हैं कि उनका परिचय ऐसा दिया जाए, लक्ष्मीपति नहीं, वैकुंठपति नहीं, भगवान अपने आप का परिचय माखन चोर ये कहलवाना चाहते हैं। तो भगवान यहां पर उन्होंने अपना ये चौथा ऐश्वर्य लक्ष्मीपति होने का जो पद है उसका परित्याग कैसे किया, चोर बनकर। अरे भाई, लक्ष्मी के पति हैं, चोरी करने की क्या जरूरत है। परंतु भगवान माता यशोदा का प्रेम चाहते थे, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने पहले तो मटका फोड़ दिया क्रोध से, और फिर गए भगवान, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, उखल पर चढ़े हुए भगवान अपने ही घर में अपने ही घर का माखन चोरी करने लगे। और माता यशोदा जैसे ही रसोई घर से बाहर आई तो माता यशोदा क्या देखती है, माता यशोदा देखती है कि मटके फूटे हुए, दही माखन सब यहां वहां बिखरा हुआ और कृष्ण गायब। तो कौन है ये महानुभाव जिन्होंने ये सब कुछ किया, यही हमारे सपूत, इन्होंने ही किया होगा। तो माता यशोदा ने कैसे देख लिया कि ये कृष्ण कहां जाकर अब चोरी कर रहा है, तो माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण के छोटे छोटे से माखन में रंजित उनके चरण चिन्ह, क्योंकि भगवान अब उसी बिखरे हुए फैले हुए माखन पर से चल के आगे गए चोरी करने के लिए। तो माता यशोदा पहले तो उस स्थिति का मुआयना कर रही है, जैसे कोई डिटेक्टिव करता है ना चोर को पकड़ने के लिए, कि हाथों के निशान, पैरों के निशान, तो माता यशोदा सब देख रही है, जैसे एक डिटेक्टिव देखता है वैसे। तो माता यशोदा देखकर पहले हंसने इसलिए लगी कि माता यशोदा ने सोचा, देखो इसमें कितनी बुद्धि आई, मैं रसोई घर में, मुझे आवाज तक नहीं आई, इसने मटका फोड़ा। क्योंकि भगवान ने मटका कैसे फोड़ा, भगवान ने मटके के पेंदी पर मारा नीचे, क्योंकि नीचे मटके में पूरा जब माखन भरा हुआ था तो नीचे जब मारते हैं तो आवाज नहीं आती फूटने की, है ना, परंतु खाली घड़े पर ऊपर मारो तो आवाज आती है। तो भगवान माता यशोदा को उस समय नहीं बुलाना चाहते थे, क्योंकि आगे लीला हम समझेंगे क्यों। तो इसलिए भगवान ने वो मटके के पेंदी पर मारा मटका फोड़ने के लिए। तो माता यशोदा उसे देखकर हंस रही है कि देखो कितना चतुर है, कि आवाज न आए इसलिए नीचे मारा पत्थर। और यहां पर भगवान, देखो भगवान, वो माखन कितना फैला हुआ था, एक मटके से कितना माखन निकलेगा, भगवान उस माखन को लांग कर नहीं जा पाए, इसलिए भगवान के चरण चिन्ह दिख रहे थे माखन में रंजित। तो यहां पर आचार्य बताते हैं कि देखिए, ये भगवान जो वामन देव के रूप में इन्होंने त्रिविक्रम का रूप लिया और अपने दो पैरों में सारी पृथ्वी सारी सृष्टि को नाप लिया इन्होंने, ये इतने से माखन को लांग नहीं पाए। क्यों, इसमें भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं क्योंकि भगवान माता यशोदा का क्रोध अपने ऊपर लाना चाहते थे, वो चाहते थे, क्योंकि माता यशोदा जो विश्वरूप अब तक देखी थी तो वो सब कुछ मिटाना चाहते थे, वो घी को वापस गाढ़ा करना चाहते थे। तो यहां पर भगवान उखल पर चढ़े, और भगवान ने किया क्या कि माता यशोदा को थोड़ा और क्रोध में लाने के लिए, ताकि माता यशोदा दंडित करे भगवान को, भगवान ने चोरी की अपने ही घर में। और केवल चोरी नहीं, बल्कि भगवान वानरों को बुला बुला कर वो माखन देने लगे। सारे बंदरों को बुलाया, तुम लोग भी आओ, तुम लोग आओ, बैठो, खाओ ये माखन। तो मानो भगवान वानरों को बुलाए, इसके पीछे इसका अभिप्राय यह था, जैसे कि भगवान अब बैठे हुए हैं तो वानरों को अपने सामने बिठा दिया, क्योंकि अब वानर जब देखेंगे कि माता यशोदा पीछे से छड़ी लेकर आ रही है तो ये भागेंगे पहले, तो समझ में आ जाएगा कि पुलिस आ गई। तो वानरों के आंखों में समझ में आ जाएगा कि पीछे पुलिस आ गई तो मैं भी भागूंगा फिर, ये कारण था वानरों को खिलाने का। दूसरा कारण वानरों को खिलाने का यह था कि भगवान माता यशोदा को यह दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा माखन इतना फालतू है कि ये वानर भी नहीं खाते, इसलिए तो मुझे जाकर बाहर चोरी करनी पड़ती है, वह ठीक का माखन बनाओ। तो माता यशोदा को उकसाने के लिए वानरों को खिला रहे हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण भगवान वानरों को क्यों खिला रहे थे, क्योंकि भगवान ने ये प्रण लिया था, अपने पिछले अवतार में मैंने इन वानरों से बहुत सेवा ली थी, राम अवतार में, राम अवतार में इन वानरों ने बहुत सेवा की थी, बेचारे जंगल में जो कुछ मिलता कभी कुछ नहीं मिलता, ये मेरी सेवा में लगे थे, भूखे प्यासे रावण के साथ युद्ध किया, इन्होंने रावण की सेना के साथ युद्ध किया, तो इन्होंने इतनी सेवा मेरी की, तो राम जी ने, प्रभु श्री राम ने ये वचन दिया था इन वानरों को कि इस अवतार में तो मैं वन में ही हूं तुम्हारे साथ, अरे मेरे पास भी कुछ नहीं खाने के लिए, परंतु मेरे अगले अवतार में तुम भी मेरे साथ आओगे, कहां पर, श्री गोकुल में, ब्रज गोकुल में तुम भी आओगे मेरे साथ, और जितना सारा बाकी रह गया है तुम्हें खिलाना पिलाना वो मैं अपने अगले अवतार में तुम्हें सब कुछ खिलाऊंगा। तो भगवान उसे याद कर रहे थे, इसलिए हमने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हमें हर समय याद कर रहे हैं, भगवान हमें याद कर रहे हैं कि हम जो उनको भूले हुए यहां पर भटक रहे हैं, भगवान हर समय याद करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है, तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा, मैं भजन करूंगा हर लो बाधा, क्यों भूल गया सारी वो बातें, तेरी बदली नजरिया रे, सीता राम कहो राधे श्याम कहो, सीता राम कहो राधे श्याम कहो, बीत जाए उमरिया रे, बीत जाए उमरिया रे, सीता राम कहो राधे श्याम कहो, सीता राम कहो राधे श्याम कहो, बीत जाए उमरिया रे, बीत जाए उमरिया रे। तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा, गर्भ में हम सब ने प्रभु से वादा किया था, गर्भ के अंदर जो तकलीफ होती है किसी शिशु को इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, कितनी तकलीफ होती है गर्भ के अंदर किसी शिशु को। यहां पर इतने बड़े हॉल में केवल 2-3 घंटा बैठने में इतनी तकलीफ हो जाती है कि पैर कभी यहां से वहां, वहां से यहां, फिर ज्यादा यहां से वहां नहीं हो पाए तो उठ के चलो बाहर, थोड़ा टहल के हवा खाकर आते हैं, बहुत हो गया। तो यहां पर दो तीन घंटा इतना बड़ा हॉल जहां पर भगवान सुंदर अच्छे विग्रह हैं, यहां पर इतनी सारी लाइट है, ये प्रोजेक्टर, ये सब कुछ है, परंतु फिर भी यदि आपसे कहा जाए कि इस हॉल में पूरा 24 घंटा बैठ सकोगे, नहीं ना? तो हम इस हॉल में 24 घंटा भी नहीं बैठने के लिए तैयार, तो देखिए हमने अपने माता के गर्भ में क्या हमने एक घंटा, दो घंटा, 24 घंटा बिताया? कितना समय बिताया? 9 महीना। अरे मैंने तो 9 महीना नहीं कहा था आपको यहां बैठने के लिए। और ये हॉल किसी माता के गर्भ से बड़ा है कि नहीं? इतना बड़ा हॉल, इसमें हम बैठने के लिए तैयार नहीं तो अपनी माता के गर्भ में ऐसी अवस्था में, ये अपने घुटने माथे पे लगे हुए उस अवस्था में हम सकुचाए हुए बैठे, खाने के लिए क्या? जो कुछ माता खाती है वो पिस कर आता है और वो उस नाड़ी से हमारे अंदर दिया जाता है। मानो आज का भोजन प्रसाद आपको ऐसे दिया जाए, यहां नाड़ी में एक पाइप बांध दिया जाए और यहां से घुसाए सारा भोजन, खाओ चलो आज का प्रसाद। तो गर्भ में बहुत पीड़ा होती है, इसलिए भागवत में श्लोक है जंतुरुवाच, अंदर का जो शिशु है गर्भ के अंदर का, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा, मैं भजन करूंगा हर लो बाधा। ये वादा हम सब ने किया था भगवान से जब हम गर्भ में थे, हे प्रभु मेरी बाधा हर लो, बाहर मुझे निकाल लो, अब सहन नहीं होता, घुटन हो रही है अंदर। क्यों भूल गया सारी वो बातें, तेरी बदली नजरिया रे, आकर हम सब भूल गए। क्या वादा हमने किया था सब भूल गए, हमारी नजरिया बदल गई। इसलिए कहा गया है सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, बीत जाए उमरिया रे, बीत जाए उमरिया रे, सीता राम कहो राधे श्याम कहो, सीता राम कहो राधे श्याम कहो। तो भगवान ने अपना वादा याद रखा कि मैंने इन वानरों को वादा दिया था कि अपने अगले अवतार में मैं तुम्हें पेट भरकर माखन खिलाऊंगा। तो इसलिए भगवान वानरों को माखन खिला रहे थे। तो अब आगे हुआ क्या कि माता यशोदा ने देख लिया, माता यशोदा ने देख लिया कि ये केवल चोरी नहीं किया, मटका नहीं फोड़ा, मटका फोड़ने के बाद चोरी किया, चोरी नहीं किया बल्कि वानरों को खिला रहा है, बंदरों को खिला रहा है। तो माता यशोदा अब दंड देने के लिए पीछे भागी। तो भगवान भाग रहे हैं, माता यशोदा पीछे भाग रही हैं। तो यहां पर भगवान ने अपना 5वां ऐश्वर्य का परित्याग किया। मूर्तिमान भय भी, जो भगवान से भयभीत रहता है, मदभयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मदभयात वर्षतिन्द्रो दहत अग्निर मृत्युश्चरति मदभयात। स्वयं मृत्यु भी जो भगवान से भयभीत रहे, वो भगवान जो मूर्तिमान मृत्यु को भयभीत करकर रखते हैं, वो भगवान माता यशोदा से भयभीत होकर अब भागना शुरू किया उन्होंने, तो भगवान ने अपना पांचवा ऐश्वर्य इसका परित्याग किया। क्या दिखाते हुए? भयभीत भगवान। इसलिए हमने कल दामोदर अष्टकम में क्या गाया, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम कराम भोज युगमेन शातंक नेत्रम मुहुश्वासकंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवं दामोदरम भक्तिबद्धम। रुदंतम, भगवान रोने लगे, और भगवान रोते रोते मुहुश्वास कंप, भगवान गहरी गहरी सांस भरने लगे। जब बच्चा भयभीत होकर रोता है तो बड़ी बड़ी गहरी सांसें लेता है, तो भगवान गहरी बड़ी बड़ी सांसें ले रहे थे, भयभीत हो गए। और भगवान त्रिरेखांक, जो तीन रेखाएं भगवान के कंठ के ऊपर होती हैं, सुंदर सुंदर रेखाएं, वो तीनों रेखाएं उनपे कंपन दिखाई देने लगा। इतना भयभीत भगवान माता यशोदा से। तो भगवान ने इस ऐश्वर्य का परित्याग किया, और माता यशोदा जो भगवान के पीछे भाग रही हैं भगवान को पकड़ने, तो माता यशोदा भगवान को पकड़ने भाग रही हैं। सोचिए, भगवान जो कि योगियों द्वारा अगम्य हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनस मुनि पुंगवान। ब्रह्मा जी ने कहा है कि बड़े बड़े मुनि मनस, मन की गति से वो भाग सकते हैं। सोचो मन की गति कितनी होती है। हम लोग सब यहां पर बैठे हैं, मन एक क्षण में कहां पहुंच सकता है? आपके घर, जो कि केवल कुछ किलोमीटर होगा। उतना ही नहीं, मन की गति इतनी है कि मन नासिक के बाहर जा सकता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर, भारत के बाहर कितना समय लगेगा मन को जाने के लिए? क्षण भी नहीं। तो ये बड़े बड़े मुनि, ऋषि मुनि, ये कौन सी रफ्तार से भगवान की तरफ जा रहे हैं भगवान को पकड़ने अपने ध्यान में? मन की गति, मन की एयरलाइंस पर बैठे, वो स्पीड पर, उस रफ्तार पर, वो भी नहीं पकड़ पा रहे भगवान को। यहां पर माता यशोदा एक ग्वालन, और वो भी माता यशोदा ने कोई दौड़ की प्रैक्टिस नहीं की थी, वो तो एक साधारण सी वृंदावन की ग्वालन थी, परंतु माता यशोदा ने भगवान को पकड़ लिया, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा अगम्य है। तो भगवान ने यहां पर अपने छठे ऐश्वर्य का परित्याग किया, ये दिखाते हुए कि जो योगी मुझे अपने मन की गति से नहीं पकड़ पा रहे, माता यशोदा ने पकड़ लिया। माता यशोदा जब भगवान को पकड़ी, तो अब माता यशोदा दंडित करने वाली है भगवान को। भगवान भयभीत कांपते हुए, माता यशोदा ने एक हाथ में छड़ी, दाहिने हाथ में छड़ी, और अपने बाएं हाथ से भगवान का दाहिना हाथ पकड़ा ताकि वो भागने न पाए। और माता यशोदा फिर ले गई भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधने के लिए। उखल से इसलिए, उखल जानते हैं कि नहीं, वो मसाला पीसने का होता है उखल, क्योंकि भगवान उखल के ऊपर चढ़कर चोरी किए थे। तो माता यशोदा ने देखा कि चलो अब उखल की गोद में सारे दिन भर रहना तुम, इस खल की गोद में, तो उखल की चारों तरफ बांधने के लिए माता यशोदा भगवान को पकड़कर ले जा रही है। तो भगवान रोते हुए कांपते हुए, माता यशोदा डांट रही है, फटकार रही है। माता यशोदा भगवान को जोर जोर से क्रोध में चिल्लाकर फटकार रही थी। माता यशोदा कह रही थी, हे वानर बंधो उत्सृंखल, दुर्वृत्य। देखिए संस्कृत भाषा में गाली भी कितनी सुसंस्कृत होती है, हे वानर बंधो, हे उत्सृंखल, हे दुर्वृत्य। संस्कृत भाषा कितनी सुंदर है। तो माता यशोदा इतनी सुसंस्कृत तरीके से गाली दे रही हैं भगवान को, वो भगवान जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने वेद स्तुतियों से प्रार्थना कर रहे हैं, उन भगवान को माता यशोदा गाली दे रही हैं। और भगवान इसी को सुनने के लिए तो ये लीला आज किए थे, क्योंकि भगवान ने कहा कि मुझे ये वेद स्तुतियों और ये प्रार्थनाओं में नींद आ जाती है, परंतु जब माता यशोदा और गोपियां मुझे गाली देती हैं, वो मुझे वेद स्तुतियों से भी ज्यादा मधुकर लगती है। ये भगवान दर्शा रहे थे। तो अब माता यशोदा उखल से बांधने के लिए भगवान को ले गई। तो माता यशोदा ने सोचा कि ये मेरा छोटा सा पुत्र है। तो माता यशोदा ने अपने केशबंद को निकाला, क्या कहते हैं उसे, वो फीता, रिबन, अपने फीते को निकाला, बाल जो बांधे हुए थे, कि इससे बंध जाएगा, इतना सा तो है मेरा लाला। तो बांधने का प्रयास किया, उखल की चारों तरफ से लेकर भगवान की कमर को उखल से, इसलिए कैदियों को भी जब बांधा जाता है तो कमर से बांधा जाता है। तो माता यशोदा अब दंड देने वाली है, तो एक कैदी के समान बंद रखने वाली है, तो फिर उस फीते को, परंतु देखा कि वो फीता बड़ा था, परंतु जब माता यशोदा ने भगवान की कमर की चारों तरफ उस फीते को लगाने का प्रयास किया, तो वो दो उंगली छोटा पड़ा वो फीता। तो माता यशोदा अब अपनी दासियों को कहती हैं, पकड़ के रखिए, भगवान को छोड़े नहीं, दासियों को कही घर की और थोड़ी रस्सियां लेकर आओ, आज इसे छोड़ना नहीं। तो दासियां जाकर घर में दो तीन बड़ी बड़ी रस्सियां थी वो लेकर आए, सब रस्सियों को बांधा गया। वापस से जब माता यशोदा बांधने का प्रयास की तो हुआ क्या, दो उंगली छोटी वो रस्सी पड़ी। माता यशोदा अचरज कर रही है कि ये क्या हो रहा है, रस्सी इतनी बड़ी हो गई, ये कृष्ण मेरा इतना सा ही है, ये बंद क्यों नहीं रही रस्सी। तो फिर जितनी सारी रस्सियां थी नंद भवन में, कितनी रस्सियां थी नंद भवन में, 9 लाख गायों को बांधने के लिए 9 लाख रस्सियां, और वो 9 लाख गायों का दूध निकालने के लिए उनके पैरों को बांधी जाती है जो रस्सी, वो भी 9 लाख। तो 9 लाख और 9 लाख कितनी रस्सियां, 18 लाख रस्सियों को, सब रस्सियों को बांध दिया गया। और अब सारे वृंदावन में खबर फैल गई कि माता यशोदा प्रयास कर रही है, यहां पर एक क्या अद्भुत कार्य हो रहा है, अद्भुत दृश्य ये है कि दो उंगली कम पड़ रही है। तो सब गोपियां आ गई देखने के लिए, क्या हो रहा है, उनको तो बहाना चाहिए था आने का। तो सब गोपियां आकर देख रही, माता यशोदा इतनी सारी रस्सियां, रस्सियों का ढेर लग गया, रस्सियों का उत्सव हो गया मानो। और माता यशोदा सोच रही रस्सी बढ़े चली जा रही है, परंतु ये कृष्ण, इसकी कमर इतनी है, ऐसा नहीं कि कृष्ण की कमर कमरा बन गई, आजकल जैसे हो जाता है, कृष्ण की कमर उतनी ही, परंतु रस्सी इतनी बड़ी बड़ी, परंतु फिर भी दो उंगल छोटी। तो माता यशोदा, सब गोपियां देख रही हैं, सब गोपियां कह रही हैं छोड़ दो नहीं शायद बंधने वाला। उन्होंने कहा क्या तमाशा देख रहे हो, तुम्हारे घर से रस्सियां लेकर आओ। उसे भी भागी अपने घर से, भाग भाग कर रस्सियां लेकर, वृंदावन में जितनी रस्सियां थी सब रस्सियां खत्म हो गई, परंतु भगवान बंद नहीं पाए, दो उंगली छोटी। तो अंततः माता यशोदा, वो पसीना पसीना माता यशोदा ने प्रयास छोड़ा नहीं। फिर भगवान ने सोचा कि इतना प्रयास कर रही है मेरी माता, तो बंध जाना चाहिए। तो फिर माता यशोदा का प्रयास देखकर भगवान बंध गए। तो भगवान ने अपना सातवां ऐश्वर्य, भगवान को गजेंद्र ने अपने श्लोक में क्या कहा, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय, कि आप मुक्ताय हैं। वो जो मुक्ताय हैं, परम मुक्त भगवान अब बद्धाय हो गए। भगवान को माता यशोदा ने अपने प्रेम की रस्सी से बांध दिया। बोलो श्री दामोदर भगवान की। और भगवान को बांधने के पश्चात, उस फोटो में जो आप देख रहे हो, बांधने के पश्चात भगवान को यह नाम मिला दामोदर। इसका अर्थ क्या है? वो भगवान जिनके उदर को दाम से बांधा गया। दाम कहते हैं रस्सी को, और जिस रस्सी से भगवान के उदर को बांधा गया वो हुए श्री दामोदर। देखो भगवान इस नाम में इतनी रुचि लेते हैं, जो नाम भगवान के कैद को दर्शा रहा है उसमें भगवान ज्यादा रुचि ले रहे हैं, दामोदर। तो भगवान जो मुक्ताय हैं बद्धाय हो गए, ये उनका सातवां ऐश्वर्य। अब माता यशोदा ने भगवान को बांध तो दिया, बांध कर भगवान से कहा खड़े रहना इधर, अब पूरे दिन भर अब ये उखल और तुम दोनों संग करो एक दूसरे का। खल कहीं के चोरी करते हो घर में, उच्छृंखल दुर्वृत्य। और भगवान कांपते हुए माता यशोदा के खड़े हैं वहां। तो अब माता यशोदा अपने घरेलू काम में लग गई, और घरेलू काम था क्या, इन्हीं की सेवा, उन्हीं को बांध के उन्हीं की सेवा में लगी। अब तो भगवान को बांध दिया और उनकी सेवा में लग गई। तो अब टाइम हो गया, सारे सखा हो आ गए, हमारा भी टाइम हो रहा है। तो सारे सखा आ गए, सुबह सुबह अब जाना है। तो सब सखा, अरे कृष्ण आज क्या बंधे हुए हो, चलो चलो खेलने। तो भगवान कहते अरे क्या देख क्या रहे हो, खोलो ना इसे। अच्छा खोले, किसने बांधा? माता यशोदा ने बांधा। नहीं नहीं नहीं, फिर हमारी हिम्मत नहीं है इसे खोलने की। तो सभी ग्वाल बाल उन्होंने थोड़ा प्रयास किया छिप छिप कर, माता यशोदा न आ जाने तो उन्हें भी बांध दिया जाएगा। तो छिप छिप कर वो खोलने का प्रयास कर रहे थे, परंतु नहीं खोल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो गोप सखा थे वो सख्य रस में थे और माता यशोदा वात्सल्य रस में। तो रस्सी बांधी गई थी वात्सल्य रस में, जो कि साख्य रस से ऊंचा है वात्सल्य रस। तो साख्य रस वात्सल्य रस की रस्सी को नहीं खोल पाएगा, ये कारण था। तो भगवान बंधे हुए, और उस समय बलराम जी ने प्रवेश किया। कौन है? बलदाऊ, भगवान के बड़े भाई, उन्होंने प्रवेश किया। वो आए और उन्होंने देखा भगवान बंधे हुए एक कैदी के समान, एक पशु के समान, एक उखल से बांधे हुए भगवान बलराम जी में। उनका आवेश आ गया, बलराम आवेश। और भगवान बलराम जी चिल्लाए, कौन है, किसने बांधा है आज इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, सामने आओ। माता यशोदा ने रसोई घर से सुना। माता यशोदा पहले अपनी छड़ी उठाई, छड़ी उठाकर बाहर आती है। कौन चिल्ला रहा है? बलराम जी। मैं चिल्ला रहा हूं, किसने बांधा है जानते नहीं, कौन है? ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये सभी के स्रोत है, सभी के उद्गम स्थान है। ये भगवान को बांध रखा है पशु के समान। तो माता यशोदा देखती हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और तुम कौन हो? मैं अनंत शेष, मैं बलराम, मैं इनका सबसे निजी पार्षद, मैं
जो सबसे पहला विस्तारित अंश हूं इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, मैं हूं बलराम अनंत शेष। तो माता यशोदा ने छड़ी उठाई, सारे भगवानों को मेरे घर में ही जन्म लेना था। और जैसे ही छड़ी दिखाई तो बलराम, अरे भागो यहां से, यहां हमारी भगवत्ता नहीं चलने वाली। तो बलराम जी अपना धोती पकड़कर भागे। तो यहां पर भगवान अपना आठवां ऐश्वर्य उसका परित्याग करने वाले हैं। भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान को कहा गया है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या है? जो सबको मुक्ति प्रदान करें। वो भगवान जो सबको मुक्ति प्रदान कर रहे हैं केवल अपने नाम में, केवल भगवान के नाम से मुक्ति मिल जाती है जीव को, वो है भगवान का कौन सा नाम? मुकुंद। तो भगवान अपने उस मुकुंद नाम से प्रसिद्ध हैं। परंतु वो जो सबको विमुक्ति दे रहे हैं वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे। वो जो मुक्ताय हैं वो बद्धाय ऐसे हुए हैं कि अपने स्वयं की रस्सी नहीं खोल पा रहे। जो हम सब के जन्म मरण को तोड़ सकते हैं अपने एक नाम के द्वारा, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपांगणा नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्य पुरुषम नमामि। वो ऐसे चोर हैं जिन्होंने हमारे अनेक जन्मों के पापों को चुरा लिया, हमें छुड़ा दिया है अपने नाम द्वारा। परंतु वो भगवान, वो मुकुंद अपने स्वयं की मुक्ति नहीं कर पा रहे। इसलिए भगवान माता यशोदा के प्रेम में बंधे रहे। इसलिए ये दो अंगुली जो कम पड़ी इसका महत्व क्या है? पहली अंगुली है भक्त का प्रयास। यदि हमें भी भगवान को भक्ति में बांधना है तो हमारे जीवन में भी, जैसे माता यशोदा दो उंगली कम देख रही थी, वैसे भी दो उंगली कम है हमारे जीवन में भी भगवान को बांधने के प्रयास में। पहली उंगली है भक्त का प्रयास और दूसरी उंगली है भगवान की कृपा। तो जब ये दोनों सिद्ध होंगे हमारे जीवन में, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, तब जाकर हम भगवान को अपने जीवन में, अपने हृदय में बांध पाएंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी फिर अंत में इस कथा के कहते हैं, नेमं विरिंचो न भवो न शरीर अप्यंग संश्रय प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात। कि ये जो सौभाग्य इस गोपी को मिला, कौन सी गोपी? यशोदा गोपी को। नेमं विरिंचो, विरिंच कहते हैं ब्रह्मा जी को, न ब्रह्मा जी को, न भव, भव कहते हैं शिव जी को, न शिव जी को, न श्री लक्ष्मी देवी जो कि अप्य अंग संश्रय, जो कि अर्धांगनी है भगवान की, न ब्रह्मा जी को, न शिव जी को, न लक्ष्मी देवी को ऐसी कृपा मिली। प्रसादम ले भिरे गोपी, जो कि इस गोपी को मिली यशोदा माई को, विमुक्तिदात, कि भगवान बंदी बने इनके प्रेम के। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, अहो धन्य, अहो धन्य, ये गोपी महाभाग है, इसका महाभाग्य है कि ये भगवान श्री कृष्ण की माता बनी। तो दामोदर लीला से हम यही सीखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यदि हमें बांधना है तो माता यशोदा के पद चिन्हों पर हमें चलना है। बोलो श्री यशोदा मई की, बोलो श्री यशोदा दामोदर भगवान की, बोलो श्री दामोदर लीला की, निताई गौर प्रेमानंदी। तो हमारे कल का विषय रहेगा श्री गोवर्धन लीला एवं श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का भव्य पुष्प अभिषेक। और आप सबको कब आना है कल?
सुबह 11 बजे।
11 बजे। तो कल का महोत्सव बहुत ही विशेष है और हम व्यक्तिगत रूप से आप सबको बुलाना चाहेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अंतिम दिवस कल आइए और भक्ति भाव से भागवत कथा का जो अंतिम दिवस है उसका पूर्ण लाभ लीजिए। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
जय।